لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذر المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرنا محترم، ہماری نشستیں جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں ان کا عنوان ہے مرجعیت اور رہبریت، اور ہمارا مقصد یہ رہا ہے کہ مکتب تشیع میں جو اجتہاد اور تقلید کا ایک نظام ہے جس کو ہم مرجعیت کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اور اس کی عقلی اور نقلی دلیلیں کیا ہیں. اور پھر اس کے آگے بڑھ کر ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ جو مرجعیت ہے یہ فقط صرف احکام میں رجوع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک فقیہ عادل کے پاس، جی
آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے بیچ میں،
اچھا اب صحیح آ رہی ہے نا،
یہ بھی بہتر ہے.
اس سے آگے بڑھ کر یہ دیکھنا بھی مقصود ہے کہ مرجعیت سے آگے ایک فقیہ عادل کے پاس زمانۂ غیبت امام میں کچھ اور اتھارٹی ہے یا نہیں ہے. اور اس بحث کو جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ چار مختلف ڈائمینشنز میں زیر بحث لایا جا سکتا ہے. پہلا ہے نظام اجتہاد اور تقلید کا تسلسل، کہ ہم نے اجتہاد پہ بات کی، ہم نے تقلید پہ بات کی، اور ہم نے یہ بتایا کہ زمانے حضور امام میں بھی ایک فقیہ سے لوگ رجوع کیا کرتے تھے احکام دین کے لیے، لیکن زمانے غیبت کبریٰ میں ذرا نظام سینٹرلائز ہو گیا اور انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا، اور جیسے جیسے زمانے میں کمیونیکیشن کا نظام بڑھتا چلا گیا چیزیں سینٹرلائز ہو گئیں، اور اب جو ہے وہ یہی نظام جو پہلے شاید شہروں کے لیول پہ ہوا کرتا تھا اور مختلف شہروں کے لوگ مختلف اوقات سے رجوع کرتے تھے، اب یہ عالمی سطح پر ہو گیا. تو وہ جو مسائل تھے کہ ایک معاشرے کی قیادت، رہبریت، اجتماعی مسائل، سیاسی مسائل، تو ان میں بھی ظاہر ہے کہ ایک حاکمیت کی ضرورت تھی، اس میں بھی ایک قیادت کی ضرورت تھی، تو اس کو بھی ہم اسی تناظر میں لے کر آئے، اور رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ مختلف ادوار میں ہمارے ایسے فقہا گزرے ہیں کہ جنہوں نے پولیٹیکل رول پلے کیا، تو ان کے پاس کیا دلیل تھی اور ان کے پاس کون سے اختیارات تھے، تو یہ ہم بعض احادیث کی صورت میں، بعض امام زمانہ سے منسوب جو توقیع شریف ہے اس کی روشنی میں ہم نے دیکھنے کی کوشش کی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر دور میں حکومت کی ضرورت ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جب حکومت کی ضرورت ہے تو ہر نظام حکومت میں حاکم کے شرائط ہوتی ہیں. تو اسلام میں جو نظام حکومت ہے، اسلام ایک کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے، اسلام ایک جامع نظام زندگی ہے، اس جامع نظام زندگی کے اندر اسلامی ریاست کی سربراہی کے لیے جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں، اور ہر دور میں خاص طور پر ہمارے دور میں ان شرائط کو فلفل کرنے والی شخصیات کون ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اسلام میں سب سے پہلی شرط تو علم ہے، इल्म है और तकवा है और शुजात है, तो ये सिफात और खसूसियात जिस फकीह आदिल के अंदर होंगी उसी को यह हक हासिल होगा कि वह इस्लामी रियासत की सरबराही करें, और जिनके अंदर ये सिफात नहीं होंगी ज़ाहिर है कि उसको हक नहीं है कि रियासत और हुकूमत के मामलात अपने हाथ में ले। ये बात हमारी हो चुकी है। तीसरी बात ये जिस पे हम आज बात करेंगे और चौथी बात पर बात करेंगे कि हम ये देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी रवायतें हमारे पास हैं और कुरान की आयत भी है कि अहले इल्म को हर तरह के अख्तियार दिए गए, जाहिल को कभी भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, बल्कि जिसको भी जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए शर्त रखी गई है कि वो अहले इल्म में से हो। तो उलमा और फकहा के हवाले से जो रिवायतें हमारे पास हैं उसकी रोशनी में हम ये देखते हैं कि इस्लामी माशरे में क़यादत के लिए रहबरियत के लिए कौन लोग जो हैं वो मुनासिब हैं, इस पर कुछ बात हम आज भी करेंगे। और आखिरी जो चौथा जो वो है जाविया इसी बहस को देखने का वो ये है कि खुद निज़ाम विलायत फ़कीह जो है वो दरअसल एक इस्लाम का एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिससे उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक क़यादत एक लीडरशिप जो है वो उभर के सामने आती है। हम देखते हैं कि जो दीगर मकातिब फिक्र हैं मुसलमानों के उनके यहाँ ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि मेरा वास्ता चूँकि पड़ता है मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के तलबा से जो अपने अपने मदारिस से पढ़ कर आए हैं, पढ़ाते भी हैं, असातिज़ा भी हैं वो, और मुख्तलिफ हर मकतब फिक्र के होते हैं हमारे पास। तो मैंने बारहा उनसे चीज़ें डिस्कस की हैं कि क्या कोई मैकेनिज्म है कि जिससे एक लीडरशिप निकल के सामने आए। बदकिस्मती से उनका ख्याल ये है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। फिर जब मैं उनको बताता हूँ कि देखो कुरान की आयत है, मसलन ये हदीस है, यह है पैगंबर की सीरत पर, तो वो किसी न किसी तरह एग्री करते हैं कि हाँ ये आयतें तो हैं, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है कि जिससे कोई ऐसा काबिल लीडर उभर के सामने आए और एक के बाद दूसरा आए, फिर तीसरा आए और चौथा आए, बल्कि जितने भी लीडरशिप उम्मत मुस्लिमा के सामने आई है वो सब हादसाती तौर पर आई है। तो कुछ उसमें से अच्छे भी आ गए, कुछ बुरे भी आ गए, यानी ऐसा कोई मैकेनिज्म उनके पास नजर नहीं आता। लेकिन हम ये देखते हैं कि मकतब तशयों में एक ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि जिससे हमेशा मुनासिब लोग के जो अहल हैं इस चीज़ के, जो वाजिद शराइत हैं, वो असल में इस्लामी रियासत की सरबराही कर सकते हैं और उम्मत की क़यादत और रहबरियत कर सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि तीन इस तरह शोबे बन जाते हैं, एक मरजाइयत और एक कजावत और एक रहबरियत। मरजाइयत यानी अहकाम दीन के लिए उनसे रजू करना, कजावत यानी जाती मामला इख्तलाफी मामला में उनसे जाके फैसले करवाना, और रहबरियत यानी इज्तमाही उमूर में माशरे की क़यादत करना और रहबरियत करना, और अगर मौका फराहम हो तो क़याम हुकूमत या हुकूमत क़ायम करना, अहकाम का इजरा करना, क़वानीन इलाहिया को माशरे में नाफ़िज़ और राइज करना। हुकूमत की ज़रूरत और शायद ऐसी हैं कि जिससे कुछ शख्स इंतजाम नहीं कर सकता, लिहाजा हर माशरे में हम देखते हैं कि हुकूमत की ज़रूरत है। इस्लाम से कबल जो हिजाज का निज़ाम था उसके अंदर कबायली निज़ाम था, कोई हुकूमत नहीं थी, कोई अदलिया नहीं थी, लेकिन पैगंबर अकरम जब मक्के से हिजरत करके मदीने में तशरीफ लाए तो आपने एक फलाही माशरा कायम किया, उसको हम आज तक कहते हैं रियासत मदीना। रियासत इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर मरकजी सतह पर एक क़यादत पेश की गई, एक निज़ाम पेश किया गया, जितने कबाइल वहाँ रहते थे उन सब को उसका पाबंद किया गया। पैगंबर अकरम के बाद निज़ाम तब्दील ज़रूर हुआ, कुछ और लोग आ गए, जो ऐलान गदीर में हुआ था उस ऐलान को पस पुश डाल दिया गया और एक नई क़यादत सकीफ़ा में सामने आ गई और वो उम्मत के ऊपर हावी हो गई। जो कुछ भी हुआ वो एक अलग बहस है पूरी तफसीली, लेकिन इस बात से इनकार किसी ने नहीं किया कि इस्लामी रियासत के अंदर एक लीडरशिप की जरूरत है। आगे जब हम बहस करते हैं हमारे बरादरान अहले सुन्नत से, तो हम कहते हैं देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैगम्बर अकरम के बाद भी इस उम्मत को एक कायद, एक हादी, एक रहबर की जरूरत है। हाँ, इसमें अख्तिलाफ है कि पैगम्बर बना कर गए या ये कि उम्मत को खुद बनाना चाहिए। अगर साबित हो जाए कि अल्लाह के रसूल बना कर गए तो फिर उम्मत को बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इससे इनकार किसी ने नहीं किया कि माशरे की क़यादत और रहबरियत के लिए एक लीडरशिप जरूरी है। अलबत्ता अमीरुल मोमिनीन के जमाने में जब खवारिज सामने आए जंगे सिफिन के बाद, तो उन्होंने पहली मरतबा इनकार किया और कहा कि कोई हुकूमत होनी नहीं चाहिए, कोई क़यादत होनी नहीं चाहिए। तो उसके जवाब में अमीर मोमिन ने फरमाया कि लाबुद्द मिन अमीरिन ज़रूरिन और फाजिरिन, की लीडरशिप तो बहुत जरूरी है चाहे वो नेक हो या बुरी। बाद अवकात ये बातें शियों को समझानी पड़ती हैं जो अजीब लगती हैं, क्योंकि शिया वो हैं जो समझते हैं कि हजरत अली से उनका हक जो है वो छीना गया था। तो वो चीज जो छीनी गई थी वो क्या है? वो यकीनन हक है, हुकूमत है, वरना अली अलैहिस्सलाम से जाहिर है कि इल्म तो नहीं छीन सकते थे, तकवा तो छीन नहीं सकते थे, सुजात तो छीन नहीं सकते थे, सखावत तो छीन नहीं सकते थे। यकीनन वो माशरे की क़यादत और रहबरियत थी जो उनसे ले ली गई और दूसरे लोग उस उम्मत के लीडर बन गए। ये बात भी हम कर चुके हैं कि आइमत आहिन से ज़ालिम हुक्मरानों को क्या खतरा था, क्यों उनको कैद करते थे, क्यों उनको ज़हर से शहीद किया जाता था। इसलिए कि वो भी समझते थे कि ये वो हस्तियाँ हैं जो इस उम्मत की हादी और रहबर हैं, और अगर इनको मौका मिलेगा तो यकीनन एक ऐसा माशरा कायम करने की कोशिश करेंगे कि जिसके अंदर इस्लाम को बालादस्ती हासिल होगी और क़वानीन इलाहिया का निफाज होगा। इस बात में भी शियों में कोई दो राय नहीं है कि इमाम ज़माना तशरीफ लाएंगे तो एक आलमी हुकूमत कायम करेंगे और इलाही क़वानीन का निफाज करेंगे। तो जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त जब हुकूमत कायम करेंगे तो उससे पहले अगर कोई हुकूमत कायम हो तो उससे क्या एतराज़ हो सकता है? देखिए उलमा और फुकाह की क़यादत के बारे में कुछ हदीसें भी हैं। हज़रत पैगम्बर अकरम ने फरमाया मल्ला यज़ुरुल फ़क़ीह की हदीस है, अल्लाहुम्मा इरहम खलफाई अल्लज़ीन यातु मिन बादी व यरौन अन्नी हदीसी व सुन्नती, के बारे रहा मेरे उन खलफा पर रहम फरमा। खलफा के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको कि खलीफा और इमाम दोनों एक ही शख्सियत के दो नाम हैं। कभी हम उनको खलीफा कहते हैं, कभी उनको इमाम कहते हैं। अगर हम उनको उम्मत के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं तो हम कहते हैं इमाम और उम्मा, उम्मत के इमाम, और जब हम पैगंबर अकरम के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं तो कहते हैं खलीफतुर रसूल, यानी पैगंबर अकरम के जानशीन। अल्लज़ीन यातून मिन बादी, पैगंबर ने फरमाया कि जो मेरे बाद आएंगे वह यरौन अन्नी हदीसी व सुन्नती, और मेरी हदीस और सुन्नत को देखेंगे। और रसूल काफी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस। अंबिया के वारिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो तबलीग करेंगे, बल्कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने तबलीग भी की और अंबिया अलैहिस्सलाम ने वक्त ज़रूरत ताऊत से मुकाबला भी किया। और बाद हदीसें और हैं जिनमें कहा गया है कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। तो बनी इसराइल के अंबिया में मूसा अलैहिस्सलाम भी हैं, मसलन जितनी मिसाल कुरान करीम में सबसे ज़्यादा आई है, सबसे ज़्यादा नाम अगर किसी नबी का कुरान में आया है तो मूसा अलैहिस्सलाम का आया है। और मूसा अलैहिस्सलाम को कुरान एक इनकलाबी लीडर के तौर पर पेश कर रहा है कि किस तरह उन्होंने फिरौन का मुकाबला किया, जालिम से जाबिर से टकराए जाके और अपनी कौम को उन्होंने उसके चुंगल से नजात दिलाई। तो अंबिया के वारिस अगर उलमा हैं तो ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि उलमा भी ये काम करेंगे और वो जालिम जाबिर फासिक फाजिर जो निज़ाम है उससे मुकाबला करेंगे, तागूत का इनकार करेंगे, तागूत के मुकाबले पर आएंगे। अमीर उन्होंने फरमाया कि अल उलमा हुक्काम अल नास, कि उलमा जो है वो लोगों के ऊपर हुक्काम है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक खुतबा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, जिसको खुतबा मीना कहते हैं, कि जब आपने वाकया करबला से 2 साल कबल कि जिस वक्त आपको इत्तला मिली कि माविया जो है वो यजीद को अपना वली अहद बना रहा है, तो आपने मीना के मकाम पर हज के मौसम में सहाबा और सहाबा की जो औलादें उस वक्त मौजूद थी उनको जमा किया, जमा करके एक खुतबा दिया। उस खुतबे के अंदर आपने उनको एहसास दिलाया कि देखो ये क्या हो रहा है, और फरमाया कि वह अंतुम आज़मुन्नास मुसीबा लिमा ग़लबतुम अलैहिम मिन मनाज़िल उलमा लो कुंतुम तफ़उन्न ज़ालिक, कि देखो असल में सबसे ज्यादा मुसीबत तो तुम्हारे ऊपर पड़ी, क्योंकि तुम्हारा जो एक मकाम और मरतबा है माशरे के अंदर, लोग तुम्हें समझते हैं कि तुम अहले इल्म हो, पैगंबर के सहाबी हो, तुमने पैगंबर से कुछ कसब फैज किया है, लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर दूसरे लोग गालिब आ गए हैं। और तुम्हें यह कोशिश करनी चाहिए कि जो तुम्हारे ऊपर दूसरे लोगों का गलबा हो गया है ये खत्म हो। क्यों? कि वे अन्ना मुजादिल उमूर वल अहकाम अला आईदियल उलमा बिल्ला, जितने भी उमूर और अहकाम हैं वो माशरे में जब नाफिज होते हैं तो खुदा का निजाम ये है कि उलमा के हाथों से नाफिज होते हैं, नाफिज होते हैं वो उलमा जो उलमा बिल्ला हैं, वो उलमा जो उलमा हक हैं, अल उमना अला हलाल ही व हराम ही, और ये वो उलमा हैं कि जो हलाल और हराम के अमीन हैं। लेकिन हुआ ये कि फअंतुमुल मसलूबून तिलकल मंजिला, तुम्हें उस मकाम और मंजिलत से नीचे गिरा दिया गया, हटा दिया गया। और फिर उसके आगे वजूहात भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे, लेकिन यहाँ जो बात असल में अहम है वो है जिसको मैंने सुर्ख रंग में लिखा है कि मुजारिल उमूर वल अहकाम अला अयदिल उलमा बिल्लाह अल उमना अला हलालिही व हरामिही, कि खुदा का निज़ाम ये है कि अहकाम का इजरा जो है उलमा के हाथ से हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा हलाल व हराम को जानने वाले वो होते हैं और वही खुदा की तरफ से हलाल व हराम के अमीन हैं। तो ये सारी जो रिवायतें हैं वो ये जाहिर करती हैं कि माशरे में अगर किसी को लीडरशिप का हक है तो वह अहले इल्म है। और पैगंबर अकरम ने जब भी किसी को जिम्मेदारी दी तो उसको दी जो इल्म रखते थे, किसी जाहिल को कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर हम देखें कि इस्लामी हुकूमत तो पैगंबर अकरम का जो ज़माना है मदीने का वो 10 साल, उसके बाद 25 साल तक दूसरे लोग आ गए, फिर उसके बाद 4.5 साल की अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत आ गई, फिर 6 महीने की इमाम हसन की, और उसके बाद अब तक ऐसी हुकूमत कोई कायम नहीं हुई जिसको शिया कह सकें कि ये इस्लामी हुकूमत। तो सवाल ही पैदा होता है कि क्या खुदा का दीन फकत चंद दिनों के लिए था, कुल 15 साल का, और अब इमाम ज़माना आएंगे और वही हुकूमत कायम करेंगे? यानी अल्लाह का जो दीन है वो हर दौर के लिए है, हर ज़माने के लिए है। अगर हर दौर के लिए है तो आज भी उसके मुताबिक एक माशरे का क़याम होना चाहिए। इसके लिए जस्टिफिकेशन क्या है? इसके लिए जस्टिफिकेशन जो है वो ये हदीस भी है जो कि इमाम ज़माना की तौक़ीए शरीफ है, वो अम्मल हवादिसुल वाक़िया पर जो उतीहा इला रुवात हदीसना फ इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाह अलैहिम भी बाजुहुम पर, कि जो हवादिस वाकया पेश आए, हवादिस वाकया का मतलब जो डे टू डे अफेयर हैं हमारी से वाकई का मतलब वो हलाल और हराम के अहकाम नहीं है जो तौज़ील मसाले में लिखे हैं, क्योंकि वो तो एक पैकेज की सूरत में दे दिया गया है। लेकिन वो वाकया जो डे टू डे पेश आता रहता है, जैसे हमारे जमाने में पेश आ रहा है, नए नए वाकयात पेश आते रहते हैं। कोरोना आया, फिर कोरोना का वायरस आ गया, वैक्सीन आ गई, तो अब इसमें हिदायत की जरूरत है उम्मत की। कोई भी नया मामला आता है तो उसमें इमाम ने फरमाया कि उन लोगों की तरफ रुजू करो तो हमारे हलाल और हराम को बताने वाले होंगे, हमारी अहादीस की रवायत करने वाले हों। फइन्नहुम हुज्जती अलैकुम, और वो हमारी तरफ से उन पर हुज्जत हैं। वअना हुज्जतुल्लाह अलैहिम, और हम खुदा की तरफ से उनके ऊपर हुज्जत हैं। तो इस सवाल को पूछने की जरूरत इसलिए पेश आई इमाम जमाना से, क्योंकि जमाने गैबत सुगह तक तो जाहिर है कि इमाम से रब्ता था उस उम्मत का, तो जो माशरे के इज्तमाही मामलात थे उनकी निगरानी इमाम अलैहिस्सलाम खुद ही कर रहे थे। लेकिन जब जमाने को गैबत कुबरा का आगाज का वक्त आया, उस वक्त जरूरत पेश आई कि इस उम्मत की क़यादत रहबरियत का क्या होगा, तो ये सवाल पूछा गया और इमाम ने इसी का जवाब दिया।
अगर आपके पास दूसरा कोई माइक है।
मेरा माइक तो बजाय बिल्कुल ठीक है,
आपकी आवाज
भी ये ब्लूटूथ वाला माइक है और ये से
जी बीच में से मिस हो जाती है थोड़ी सी
शायद।
हाँ चले फिर, नहीं है तो ठीक है।
नहीं दूसरा वो हैंड फ्री है वो लगा लूँ मैं
जी, अगर लगा सकते तो।
अच्छा तो एक एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं हैंड फ्री लगाता हूँ। ठीक है
जी, अब मेरी आवाज आ रही है
जी? बेहतर है, बहुत बेहतर। जी डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाह।
अच्छा, तो जवाने गैबत में अब उम्मत की क़यादत के हवाले से क्या हो सकता है? तीन ऑप्शंस देखे आ रहे हैं। या तो कह रहे हैं कि किसी के हाथ में नहीं है ये क़यादत और उम्मत जो है वो हेडलेस है, जैसा कि आम तौर पर हम देख रहे हैं मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा जो है इस वक्त ये हेडलेस है और ये किसी क़यादत पर मुत्तफिक नहीं है। अगर ये क़यादत पर मुत्तफिक नहीं है तो इसको उम्मत कहना ही सही नहीं। उम्मत का तो मतलब ही यही है कि उसका कोई इमाम होगा, उसका कोई कायद होगा, उसका कोई लीडर होगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि मसलन फ़र्ज़ करें कुछ बच्चे जाकर कहते हैं कि ये टीम है हमारी, तो उससे पूछा जाएगा उनका कैप्टन कौन है, वो कहते नहीं कैप्टन कोई नहीं है, ये क्रिकेटर, ये बैट्समैन है, ये बॉलर है, ये विकेट कीपर है। तो देखिए टीम तो ऐसी होती है, उसमें कुछ बॉलर होते हैं, कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ विकेट कीपर होते हैं, लेकिन उनकी एक लीडरशिप होती है जिसको कहते हैं कैप्टन। अगर कैप्टन नहीं है तो इसका मतलब ये कि वो टीम नहीं है। इसी तरह उम्मत मुस्लिमा के पास अगर इमाम नहीं है तो हदीस में है कि उम्मत जो है बगैर इमाम के ऐसी है जैसे चरवाहे के बगैर रेबड़। आज हम देख रहे हैं उम्मत मुस्लिमा की हालत ऐसी ही है कि ऐसे रेबड़ की तरह है जिसके ऊपर कोई चरवाहा नहीं है, और जिस तरह चरवाहा ना हो तो भेड़ बकरियां इधर उधर भागती हैं, कोई किसी को सींग मारती है, कोई किसी के खेत में घुस जाती है। यही हाल आज उम्मत मुस्लिमा का हमें नज़र आ रहा है। इसलिए अगर इस उम्मत के अंदर कोई ऐसी कौम है जिसके पास लीडरशिप है, मरकजियत है, तो वो शिया हैं, वो मकतब तशयु है जिसके पास अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप है, एक बाबसीरत लीडरशिप, एक शुजा लीडरशिप, एक आलिम लीडरशिप, एक मुजाहिद लीडरशिप जो इस्तेमार की आंखों में आंखें डालकर बात करती है, ये लीडरशिप और किसी के पास आप दिखाएं? जो बाकी उम्मत है जिनके पास हादसाती तौर पर लीडर पैदा हो जाते हैं, कभी उसामा बिन लादन लीडर बन गए, कभी सद्दाम लीडर बन गया, कभी मुल्ला उमर अमीरुल मोमिनीन बन गए, कभी अबू बकर बगदादी खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए, लेकिन इनके आप देखें क्या ये अहले इल्म में से हैं, क्या ये शुजात का मुजाहरा करने वालों में से हैं? इनमें से किसने मुकाबला किया, किसने मुकाबला नहीं किया? सब भागते भागते हुए पकड़े गए, मुल्ला उमर भी गायब हो गया पहाड़ पे गधे पर बैठकर, उसामा बिन लादन को भी इसी तरह मारा गया, ढूंढ के छुपे हुए थे वो, सद्दाम जो है वो किसी अंडरग्राउंड पता नहीं किसी बंकर में छिपा हुआ था, उसको ढूंढ के वहां से निकाला गया। सब इसी तरह जो भी है आप देखें कि शुजात के साथ लड़ते हुए मर्दाना वार मुकाबला करते हुए आप नजर नहीं आएंगे। ये इल्म एतबार से देखिए तो इनकी कोई इल्मी हैसियत नहीं है, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई टिम्बर मर्चेंट है, कोई साबिक फौजी है, कोई कुछ है, तो इस तरह ये लोग जो हैं इस काबिल नहीं है कि उम्मत की क़यादत कर सकें, लेकिन हादसाती तौर पर ये लीडर बन गए थे और एक तबके ने इनको अपना लीडर मान लिया था, लेकिन वो उस मियाद पर पूरे नहीं उतरे। तो मकतब तशय्यो वो है जिसके पास वो मैकेनिज्म है कि जिसके ज़रिए से एक लीडरशिप सामने आती है, और वो लीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह आलिम भी होती है, बाबसीरत होती है, मुजाहिद होती है, शुजा होती है। अब अगर किसी के हाथ में नहीं रहेगा ये क़यादत तो फासिक व फाजिर के हाथ में चला जाएगा, खुद ब खुद फासिक व फाजिर लोग आगे आएंगे और माशरे को कंट्रोल कर लेंगे, अपने हाथ में ले लेंगे। तो ये तीसरा ऑप्शन है जो शियों वाला ऑप्शन है कि फकीह आदिल के हाथ में ये निज़ाम हो, तो जाहिर है कि ऊपर के दोनों ऑप्शन से बेहतर है, क्योंकि फकीह आदिल के हाथ में अगर ना हो तो क्या होगा कि अहकाम खुदा मुअत्तल रहेंगे, शरीयत के अहकाम किताबों में बंद रहेंगे, मदारिस में पढ़ाए जाएंगे, तालिबे इल्म इम्तहान पास करेंगे, डिग्री लेंगे और चले जाएंगे। या जिस तरह मैंने इब्तदा में अर्ज किया कि इस्लाम के ऐसे अहकाम हैं वो बस इब्तदाई 15 साल के लिए थे, अब जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो निज़ाम विलायत फ़कीर जो है वो इस ज़माने में एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो मौजूदा ज़माने के उम्मत मुस्लिमा के क्राइसिस का हल है। क्या इससे पहले किसी ने यह हुकूमत कायम की? नहीं, इससे पहले किसी ने नहीं की, लेकिन नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि लीडरशिप नहीं थी शियों के पास, लीडरशिप रही है हर दौर में, हुकूमत कायम करने का मौका नहीं मिला। जिस तरह 12 इमामों में से हुकूमत किसने कायम की? अली अलैहिस्सलाम ने कायम की, कुछ अर्से के लिए इमाम हसन ने कायम की, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बाकी आइमा ताहरीन जो थे हुकूमत का क़याम उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? थी, लेकिन उम्मत साथ नहीं दिया। उम्मत अगर साथ देती तो यकीनन वो, ऐसी बहुत सारी रवायतें हैं आइमा ताहरीन से, लोग उनसे पूछते थे आप क़याम क्यों नहीं करते, क़याम क्यों नहीं करते, मकसद ये है कि आप क़याम करेंगे, उठ खड़े होंगे तो लोग आपका कुछ साथ देंगे, लेकिन आप हमेशा फरमाया करते थे कि अगर इतने लोग भी मेरे साथ होते तो मैं क़याम करता। तो आइमा ताहरीन तो तैयार थे लेकिन उम्मत तैयार नहीं थी। अच्छा, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनमें बास सिस्टम को बहुत आइडियलाइज किया गया है, और वो है डेमोक्रेसी। मुख्तलिफ तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, एक तो बादशाहत है, मोनार्की, जिसको बहुत बुरा निज़ाम समझा जाता है, जिसको डिक्टेटरशिप समझा जाता है, और उसके मुकाबले में जमहूरियत को एक आइडियल निज़ाम समझा जाता है। और ये समझा जाता है कि जी जमहूरियत वह निज़ाम है कि जिसमें आवाम की पार्टिसिपेशन होती है, और ये निज़ाम दुनिया में कामयाबी से चल भी रहा है। अमेरिका में देख लें, आप यूरोप में देख लें, और बहुत से मुल्कों में देख लें जहाँ जमहूरी निज़ाम जो है कामयाबी से चल रहा है। अब जब जमहूरियत एक कामयाब निज़ाम के तौर पर दुनिया में आया है तो लोग सवाल करते हैं कि इस्लाम का जमहूरियत से क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक है या नहीं है, या इस्लाम डिक्टेटरशिप चाहता है। तो देखिए, जमहूरियत का जो निज़ाम है ये आया तो मगरिब से है, लेकिन अगर कोई ये पूछता है कि जी इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश है, तो देखना पड़ेगा कि जमहूरियत का निज़ाम है क्या। जमहूरियत का मतलब अगर ये है कि आवाम की पार्टिसिपेशन और जो उनकी थ्योरी है, जिसको थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसके मुताबिक हर शख्स को हुकूमत का हक हासिल है और फिर हर शख्स को जो हक है वो ये हक जो है वो किसी एक आदमी को दे देता है इख्तियार इलेक्शन में वोट डाल के, कि ठीक है मेरे ऊपर जो हक हुकूमत है मैं आपके हैंड ओवर करता हूँ, आप पार्लियामेंट में जाएं और आप हमारे लिए कानून साजी करें, हम उसकी पाबंदी करेंगे माशरे के वसीतर मफाद में। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हर इंसान आज़ाद है और हर इंसान को बराबर हुकूक हासिल हैं और हर इंसान को हक हुकूमत भी हासिल है। इस्लाम के निज़ाम में हम देखते हैं कि इंसान इस तरह आज़ाद नहीं है जिस तरह मगरबी जमहूरियत में है, बल्कि इंसान अब्द है और खुदा माबूद है। अब्द यानी ग़ुलाम है और बंदा है, और माबूद और इलाह जो है वो खुदा है। लिहाजा इंसान के पास जो आज़ादी है वो आज़ादी उस हद तक है जिस हद तक उसके माबूद ने उसको दी। तो पहले पहला फर्क यही हो गया। दूसरा ये है कि हर शख्स को क्या हुकूमत का हक हासिल है, नहीं, यहाँ हर शख्स को हुकूमत का हक हासिल नहीं है। हुकूमत का हक हासिल उसको है जो मखसूस शराइत रखता हो, अगर वो मखसूस शराइत नहीं रखता तो उसको हुकूमत का हक हासिल नहीं है। तो क्या इस्लाम में जमहूरियत की कोई गुंजाइश है? तो देखिए, जो मगरबी जमहूरियत है उसकी गुंजाइश तो बराह रास्त इस्लाम में नहीं है, लेकिन यह है कि इस जमहूरी निज़ाम को कुछ तब्दीली करके उसको मुशर्रफ बा इस्लाम कर लिया जाए, यानी उस पर कुछ ऐसी शरायत लगा दी जाए कि जो इस्लाम के मुताबिक हो। तो ये मगरबी जमहूरियत जो है वो इस्लामी जमहूरियत में तब्दील हो सकती है। बस मगरबी जमहूरियत में यह है कि आवाम सारे फैसले करेगी, आवाम ने जिन लोगों को मुंतखब कर लिया है वो जो चाहे कानून साजी कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे जर्मनी में क्या हुआ कि जब वहाँ पर ये होमोसेक्सुअलिटी का बिल आया पार्लियामेंट में, तो जो जर्मन चांसलर थी खातून, उन वो एक मजहबी खानवारे से ताल्लुक़ रखती थी, तो वो उसकी मुखालिफ थी, और जो मजहबी हलका था वहाँ पर वो भी इस कानून का मुखालिफ था कि मर्दों से मर्दों की और औरतों से औरतों की शादी जो है वो अलाउ कर दी जाए। अलाउ तो पहले ही सी थी, कुछ उनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए एज ए फैमिली, एज ए पार्टनर। तो वो जो जर्मन चांसलर थी वो इसके हक में नहीं थी ज़ाती तौर पर, लेकिन उनकी जो पार्टी थी वो हक में थी और दीगर पार्टियां भी हक में थी। तो पार्लियामेंट में वो बिल आया और मंजूर हो गया, गो कि वो नहीं चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनको कबूल करना पड़ा। तो एक ऐसा कानून के जो न सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है बल्कि क्रिश्चियनिटी के भी खिलाफ है, और उस मुल्क के अंदर मेजोरिटी क्रिश्चियंस के ही है, तो क्रिश्चियंस के जो मजहबी हल्के हैं उन्होंने उसकी मुखालफत भी की, इसके बावजूद भी वो बिल पास हो गया। तो एक इस्लामी जमहूरियत के अंदर ऐसा कोई बिल पास नहीं हो सकता जो अल्लाह के कानून से, अल्लाह के रसूल के बताए हुए कानून से मुतसादिम हो। तो यहाँ जो पार्लियामेंट है वो हर तरह की कानून साजी नहीं कर सकती, उसके कुछ हदूद और क़ुयूद हैं, और पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए भी कुछ शराइत हैं। मिसाल के तौर पर हमारे एक ज़माने में पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए बीए की शर्त लगा दी गई थी, फिर उसके बाद इतने जाली डिग्रियाँ सामने आई लोगों की कि वो शराइत ख़त्म कर दी गई, और ये कहा गया कि भाई जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ कौन सी शर्त है, क्या अमेरिका में यूरोप में कहीं ये शर्त है कि पार्लियामेंट का मेंबर होने के लिए बीए ज़रूरी हो? देखिए, वहाँ तो लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा है कि जाहिल आदमी पार्लियामेंट में पहुँच ही नहीं सकता, हर आदमी पढ़ा लिखा है। हमारे मुल्क में चूँकि पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है और जाहिलों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए यहाँ इस किस्म की शराइत लगाई गई थी, लेकिन वो शराइत भी ख़त्म कर दी गई ये कह के कि भाई لوگوں کی مرضی ہے, وہ جس کو چاہے منتخب کریں. اگر وہ جاہل کو بنانا چاہتے ہیں تو جاہل کو بنائیں, آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے. ایک اسلامی جمہوریہ کے اندر یہ تصور نہیں ہو سکتا, بلکہ ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کے جو ممبرز بنیں گے ان کی کچھ شرائط ہوں, جو لوگ ان شرائط پر پوری اترتے ہوں صرف وہی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. کیا ایران میں رہبر کا انتخاب جمہوری طریقے سے ہوتا ہے؟ دیکھیں, رہبر کا انتخاب کرنے کے لیے جمہوریت کی شرط نہیں ہے. یہ خود اسلام کے اندر جو ہے جمہوریت براہ راست نہیں ہے, لیکن جمہوریت کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے, بس یہ گنجائش ہے. کیونکہ جمہوریت کا مطلب میجورٹی از اتھارٹی, اور اسلام جو ہے وہ میجورٹی کو ریکوگنائز نہیں کرتا. یہ کوئی عقلی اور منطقی بات نہیں ہے کہ جہاں میجورٹی ہوں گی وہ بات جو ہے وہ حق ہوگی, وہ سچ ہوگی, وہ صحیح ہوگی. ضروری نہیں ہے, بعض اوقات پوری میجورٹی جو ہے وہ باطل پر ہوتی ہے. تو جو حق ہے وہ حق ہے, خواہ اس کے ساتھ میجورٹی ہو یا نہ ہو. لیکن اگر فرض کریں کوئی ایک ڈیسیجن ہے, وہ اگر میجورٹی ہے اور میجورٹی صحیح ڈیسیجن لے رہی ہے, تو اس کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر کوئی اور خرابی اس کے اندر نہیں ہے, تو میجورٹی کا مطلب یہ ہے کہ پاپولر جو سپورٹ ہے وہ اس کے ساتھ ہے. تو رہبر کا انتخاب, ایک بات تو جو میں بیان کر چکا ہوں شاید پچھلے لیکچر میں, کہ رہبر کے لیے انتخاب نہیں ہوتا, ان کو الیکٹ نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. سلیکٹ کا لفظ شاید بہت اچھا نہیں ہے, جب ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اصل میں ان کی شناخت کی جاتی ہے. ایسے فقیہ کو ڈھونڈ کے نکالا جاتا ہے کہ جو اس وقت اس زمانے میں ایک اسلامی حکومت کو چلا سکے, اور پھر اس سے ریکویسٹ کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ تشریف لائیے اور آپ اس نظام کو اپنے ہاتھ میں لیجئے. تو اس میں رہبر کی شناخت کی جاتی ہے, ولایت صاحب ولایت کی شناخت کی جاتی ہے. اب چونکہ ایک نظام بنانا مقصود تھا ایران میں انقلاب کے بعد, تو اس کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک جمہوریت کی روح بھی نظر آئے. مثلا یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام وہ کرے گا کہ جو جتنے بھی فقہاء اعظام ہیں ان کو جانتا ہوگا. جیسے ہم تقلید کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ہم اہل خبرہ سے جا کے پوچھتے ہیں. اہل خبرہ کون ہے؟ اہل خبرہ وہ ہیں کہ جو مجتہد کے علم سے واقف ہیں. تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ اہل خبرہ بتائیں گے. لیکن چونکہ ایک نظام دنیا میں بن رہا ہے اور چیزیں انسٹیٹیوشنلائز ہو رہی ہیں, لہذا اہل خبرہ کو بھی کیا کیا گیا, ایک انسٹیٹیوشن کی شکل دے دی گئی اور اس کا نام رکھ دیا گیا مجلس خبرگان. اس کا ممبر بننے کے لیے سخت شرائط ہیں. اس کے اندر زیادہ تر علماء ہیں, کیونکہ یہ کام جو ہے بنیادی طور پر اسلامی نظام میں اہل علم کا کام ہے. لیکن موجودہ دور میں چونکہ معاملات کافی پیچیدہ ہیں اور جو ایشوز ہیں مسلمانوں کے وہ انٹر ڈسپلنری ہیں, لہذا اس فورم کے اندر مجلس خبرگان کے اندر علماء کے ساتھ ساتھ بعض ٹیکنوکریٹس کو بھی رکھا گیا ہے. لہذا وہ جو ممبرشپ ہے اس کی, علماء کی ہو یا ٹیکنوکریٹس کی, اس کا الیکشن کروایا جاتا ہے, اور جو واجد شرائط صاحب شرائط لوگ ہیں ان میں سے ایسے لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے کہ جن کو عوام پسند کرتے ہیں. یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے کوئی چیز کہ لوگ بھی اپنے ہاتھوں سے منتخب کر کے وہاں بھیجیں تاکہ ان کے اندر ایک پارٹیسپیشن کا احساس ہو. یعنی اس خود اسلام کی کوئی بنیادی تقاضا نہیں ہے یہ, لیکن بہرحال ایک طریقہ کار رکھا گیا. تو مجلس خبرگان کا کردار یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ موجودہ حالات میں اس امت کی قیادت اور رہبریت کے لیے کس فقیہ اور کس مجتہد کے اندر سب سے زیادہ صلاحیت ہے, اور ان سے ریکویسٹ کرے, پہلے ان کی شناخت کرے, پھر ان سے ریکویسٹ کرے کہ آپ یہ نظام اپنے ہاتھ میں لیں. اور شناخت کا معیار وہی ہے کہ جو اسلام میں قیادت اور رہبریت کی شرائط ہیں. تو اس طرح جمہوریت ولایت فقیہ کے نظام کو جمہوریت سے سازگار کیا گیا ہے تاکہ ایک جمہوری نظام ہو, اور اس جمہوری نظام کے اندر جو عوام کی پارٹیسپیشن کا احساس ہے وہ باقی رہے. اب آخر میں کچھ اہم سوالات ہیں جو ہم کر دیتے ہیں, پھر جو بچ جائے گا وہ آپ لوگ کر لیجئے گا. کہ اگر یہ سوال بہت آج کل کیا جا رہا ہے, حالانکہ یہ کوئی پریکٹیکل سوال نہیں ہے, فرضی سوال ہے, لیکن چونکہ ہر جگہ ہوتا ہے یہ کہ اگر ایک سے زیادہ ملکوں میں اسلامی نظام قائم ہو جائے تو کیا وہ سب اسلامی سمجھ جائیں گی؟ دیکھیں, اصولی طور پر تو اسلام کا مطلب ہے ایک نظام حکومت, چاہے وہ پوری دنیا میں ہو, اور اب سے 100 سال پہلے تک ایسے ہی تھا کہ عالم اسلام جو ہے وہ پورا ایک تھا. اور آج جو بہت سارے ممالک بن گئے, یہ ممالک اصل میں صوبے تھے. خراسان ایک صوبہ تھا, عراق ایک صوبہ تھا, یمن ایک صوبہ تھا, مصر ایک صوبہ تھا, یہ سب ایک صوبے تھے. لیکن ہوا یہ کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سے ہی یہ حصے وکھرے شروع ہو گئے, اور اس طرح عالم اسلام کو توڑ پھوڑ کے انہوں نے کوئی پتہ نہیں 58 ممالک بنا دیے. اب صورت حال یہ ہے کہ ان ملکوں کی اپنی سرحدیں ہیں, بارڈرز ہیں, جن کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے. تو اگر ایک ریاست کے علاوہ کہیں اور بھی اس طرح کا انقلاب آ جائے یا اسلامی قوانین نافذ ہو جائیں تو کیا اس کو اسلام سمجھا جائے گا؟ مجبوری ہے اس دور میں, اور یہ کہ دونوں کو اسلام سمجھا جائے گا, دو ہو تین ہو, پریکٹیکلی یہ بھی ایسا نہیں ہے. اگر ایک سے زیادہ واجد شرائط فقہ ہوں تو ولی فقیہ کون ہوگا؟ دیکھیں, ولی فقیہ وہ ہوگا جو اس وقت اسلامی ریاست کو درپیش جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ رکھتا ہوگا, اور اس کا تعین مجلس خبرگان کرے گی. کیا ولی فقیہ کا ایرانی ہونا ضروری ہے؟ ایران کے کانسٹیٹیوشن میں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے کہ ولی فقیہ کا ایرانی ہونا ضروری ہے, لیکن ایک عقلی منطقی بات یہ ہے کہ جہاں اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے اس کو وہاں ہونا چاہیے, اس سے باہر رہ کے یہ کام نہیں کر سکتا. تو ایرانی ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن ایران میں ہونا ضروری ہے. کیا ولی فقیہ کا مرجع تقریر ہونا بھی ضروری ہے؟ دیکھیں, ولی فقیہ جو ہے وہ اس امت کا لیڈر ہے, اصل میں سیاسی لیڈر. تو کیا ضروری ہے کہ وہ فقہ میں بھی سب سے ماہر ہو تاکہ لوگ اس سے فقہی مسائل میں بھی رجوع کریں؟ اگر ہو تو اچھی بات ہے, لیکن نہیں بھی ہو, کیونکہ دیکھیں تقلید تو کرتے ہیں آپ عالم کی, اور عالم کی شناخت آپ خود کرتے ہیں. تو آپ نے جس کی شناخت کر لی ہے عالم کے طور پر, اور ولی فقیہ وہ نہیں ہے, کوئی اور ہے, تو کیا آپ کو پابند کیا جائے گا کہ آپ تقلید انہی کی کریں؟ ایسا کچھ نہیں, بلکہ ولی فقیہ کا فقیہ ہونا ضروری ہے, لیکن فقیہ اعلیٰ بھی ضروری نہیں. تو عالم ہونا ضروری نہیں, بالکل ایسے جیسے ایک یونیورسٹی ہے, اس یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہوتا ہے اس کا پروفیسر ہونا ضروری ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سینئر موسٹ پروفیسر ہو, یا سب سے اعلیٰ ریسرچ پیپر اس کے ہوں, یا سب سے اعلیٰ پی ایچ ڈی اس نے کرائی ہو. نہیں, کیونکہ وائس چانسلر بننے کے لیے پروفیسر ہونا تو ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو کوالٹی ہونا ضروری ہے. اگر ایڈمنسٹریٹو کوالٹی نہ ہو تو ظاہر ہے ادارہ نہیں چلا سکتا, چاہے وہ سینئر موسٹ پروفیسر ہو. کیا ہر مقلد کا مشہور اس کا ولی فقیہ ہوتا ہے؟ یہ آج کل بہت بات کی جا رہی ہے کہ جی ہر مقلد کا جو مشتہر ہوتا ہے وہ اس کے لیے ولی فقیہ. جی نہیں, دیکھیں مقلد جو ہوتا ہے وہ وہ احکام میں اس کی تقلید کرتا ہے. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ احکام اس سے لیتا ہے بس, اس کے لیے مشتہر کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کی تقلید کر رہا ہوں. وہ مشتہر کے علم سے رجوع کرتا ہے, وہ مجتہد کے علم سے. تقلید جو ہوتی ہے وہ علم کی ہوتی ہے, ہم مجتہد کے علم سے رجوع کرتے ہیں بس. جبکہ ولی فقیہ اسلامی حکومت کا سربراہ جو ہوتا ہے, ہم उसको उसकी जात में रुजू करते हैं कि ये लीडर है इस उम्मत का, ये कायद है, ये रहबर है, और ये जिस वक्त भी जो हुक्म देगा हमें उसकी बात माननी है। लोग तो तकलीद चेंज भी कर देते हैं, क्या वली फकीर को चेंज भी कर सकते हैं? नहीं, चेंज नहीं कर सकते। मुकल्लिद में तकलीद में तो ऐसा है कि अगर आज साबित हो जाए कि जिस मुजतहिद की हम तकलीद कर रहे हैं उसका इल्म कम है और दूसरे वाले का ज्यादा है तो उसकी तरफ रुजू कर लेंगे। तो ये बात सही नहीं है कि हर मुकल्लिद का मुजतहिद वली फकीर होता है, क्योंकि वली फकीर जो है वह इस्लामी हुकूमत का सरबराह होता है, लिहाजा जो सरबराह नहीं है वो वली फकीर नहीं हो सकते। अगर मुश्तहिद का हुक्म और वली फकीर का हुक्म टकरा जाए तो ठीक है, अगर वली फकीर बतौर मुश्तहिद के एक हुक्म देता है और हम किसी और की तकलीर करते हैं, जैसे मसलन अभी चांद के मसले पे हुआ कि जी रहबर के नज़दीक तो चांद जो है वो अगर दूरबीन से नजर आ जाए फिर भी काफ़ी है, आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक काफ़ी नहीं है, बल्कि नेकेड आई से ये देखना ज़रूरी है। अब अगर कोई शख्स आयतुल्लाह सिस्तानी का मुखलिद है और वो ईरान में रहता है तो अपने मुश्तहिद की बात मानेगा, वो वली फकीह की बात नहीं मानेगा। अलबत्ता बाज़ मुश्तहिदीन ने यह कहा है चांद के मामले में कि हाकिम शरा का अगर हुक्म आ जाए या ऐलान आ जाए तो वह ऐलान काफ़ी है। तो किसी भी मुश्तहिद का वो मुखलिद हो उसको वो ऐलान मानना चाहिए। आयतुल्लाह सिस्तानी का हुक्म चूंकि नहीं है इसलिए जो आयतुल्लाह सिस्तानी के मुखलिदीन हैं उन्होंने ईद उस दिन नहीं की जिस दिन पूरे ईरान में ईद हुई। तो फिकही मसले में इस तरह है कि आपका आज़ादी है, आप अपने मुश्तहिद के पीछे चलें, लेकिन अगर सियासी हुक्म हो, इज्तिमाई मामला हो, तो उसमें अब ऐलान तो टकराएगा नहीं, क्योंकि जो मुश्तहिद होता है आम मुश्तहिद वो सियासी मामलात में इज्तिमाई मामलात में कोई ऐलान करता ही नहीं है, कोई फैसला करता ही नहीं है कि वो टकराने का ख़तरा हो। और अगर टकरा जाए खुदा न खास्ता, ये भी एक फर्जी वाक़या है, फर्जी मसला है, तो फिर वली फकीह से रजू किया जाएगा, क्योंकि इस्लामी रियासत के सरबराह का जो हुक्म होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। क्या किसी मुश्तहिद को वली फकीह से इख्तलाफ का हक हासिल है? बिल्कुल हासिल है। मुश्तहिद बत है बहसर, एक मुश्तहिद के बहसर एक स्कॉलर के अपनी राय रख सकता है और रखते हैं मुश्तहिदीन। इख्तलाफ जो है हमारे हौज़ा इल्मिया में एक कॉमन प्रैक्टिस है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, इख्तलाफ कर सकता है, वो अपने अपनी राय पेश कर सकता है, आर्गुमेंट भी दे सकता है, लेकिन इज्तिमाई मामलात में वो उसी निज़ाम का पाबंद होगा जो निज़ाम माशरे में राइज है। इसको हम समझाने के लिए मिसाल देते रहते हैं बाज़ात कि मिसाल के तौर पर मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और हमारी यूनिवर्सिटी का एक निज़ाम है, फर्ज करें कि हमारी यूनिवर्सिटी का निज़ाम जो है वह है सेमेस्टर सिस्टम, यहाँ जो इम्तहान होते हैं वो 6-6 महीने पे होते हैं। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पर सेमेस्टर सिस्टम का मुखालिफ हूँ, मैं समझता हूँ कि एनुअल सिस्टम बेहतर है, तो ये मेरी राय हो सकती है, ये मेरा हक है कि मैं अपनी राय रखूँ। मैं अपनी राय के हक़ में दलील भी दे सकता हूँ, मैं तकरीर भी कर सकता हूँ, मैं आर्टिकल भी लिख सकता हूँ, लेकिन बीइंग ए प्रोफेसर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी जब मैं इम्तहान लूँगा तो सेमेस्टर सिस्टम ही से लूँगा, एनुअल सिस्टम से नहीं ले सकता। यानी मैं इस सिस्टम का पाबंद रहूँगा, चाहे मेरी राय इल्मी एतबार से मुख्तलिफ ही क्यों ना हो, मैं उसका इजहार तो कर सकता हूँ लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकता। बस अख्ताम हम करते हैं इस बात पे कि ये जो निज़ाम विलायत फ़कीह है, इनकलाब इस्लामी के बाद जब पूरी दुनिया में एक शोहरत है उसकी, उसकी मुखालफत क्यों हो रही है इतनी, या कौन लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? एक वजह जो नज़र आती है वो ये है कि ये जो निज़ाम कायम हुआ है ये तागुती निज़ाम को शिकस्त देकर आया है। शाह ईरान जो था वो सिर्फ ईरान का हाकिम नहीं था, ईरान का बादशाह नहीं था, बल्कि इस खित्ते में अमेरिका का सबसे बड़ा हिमायती और तरफदार था। अमेरिका और इसराइल के जो सिफारखाने थे तेहरान में, वो इस पूरे रीजन को कंट्रोल करने के लिए जासूसी का अड्डा थे। और ये बात साबित हो गई है जो वहां से डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए और वो किताबी शक्ल में छप गए। तो शाह ईरान की शिकस्त, शाह ईरान का मुल्क से फरार करना उस तागुती निजाम को एक शिकस्त है, इसलिए ये तागुती जो निज़ाम है वो उसके मुखालिफ हैं और वो हमेशा रहेंगे, उनसे खैर की तवक्को रखना बेकार है। दूसरे लोग जो वो हैं जिनको इस निज़ाम से ज़ाती नुकसान हुआ, एक इनकलाब आया, उस इनकलाब से पहले उनके मामलात जो है वो शाह के साथ सेट थे और वो सारे गलत काम करते थे, ज़ाती मफाद हासिल करते थे, अब जब इनकलाब आया तो उनके मफाद को नुकसान पहुंचा तो वो लोग ज़ाहिर है कि मुखालिफ हो गए, खा वो ईरान के अंदर हों या ईरान से बाहर हों। तीसरा नुकता यह है कि सुन्नी निज़ाम खिलाफत अब तक कामयाब नहीं हो सकता। सुन्नियों ने बहुत कोशिश की कि कोई मॉडल उनका भी बन जाए, मौलाना मौदूदी ने भी बनाया, इख्वान मुस्लिमीन ने भी बनाया, लेकिन अब तक वो मॉडल कामयाब नहीं हुआ, बल्कि जहाँ पे भी आया वहाँ पर या तो खुद गिर गया या उसको गिरा दिया गया। अब अलग अलग तबसरा करने का टाइम नहीं है, वरना सही बात यह है कि उनकी अपनी कमजोरी थी जिसकी वजह से वो संभाल नहीं सके। चूंकि उनके खिलाफत का निज़ाम जो है वो अब फेल हो गया है, लिहाजा उनके जो एक्टिविस्ट हैं उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है और वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो शियों से दुश्मनी के जरिए निकालते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के निज़ाम उन्होंने चलाने की कोशिश की, वो फ्लॉप हो गया। मिस्र के अंदर जो इख्वानुल मुस्लिमीन ने मुर्सी की हुकूमत कायम की वो हुकूमत फ्लॉप हो गई। अल्जीरिया के अंदर जो इलेक्शन में आ गए थे वो ख़त्म करके वहाँ फौजी आ गए। अलगरज जहाँ जहाँ पे भी आप देखें कि उन्होंने कोशिश की वो नाकाम हुए, तो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है और अब वो जब देखते हैं कि 40 साल से जमहूरी इस्लामी जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है इस्तेकामत के साथ और डटा हुआ है अमेरिका के सामने, इसराइल के सामने, उनकी साजिशों को पूरे मिडिल ईस्ट में उन्होंने खाक में मिला दिया, उन्होंने दाइश बनाई, उन्होंने इराक़ पे कब्ज़ा किया, उन्होंने शाम पे कब्ज़ा किया और उनके इस आइडिया को फ्लॉप कर दिया गया, शिकस्त हुई दाइश को शाम में भी इराक़ में भी, उन्होंने ईरान इराक जंग की उसके अंदर भी उनको नाकामी हो गई, उन्होंने यमन को कब्जा करने की कोशिश की, यमन भी उनके सामने डट गया, और इसराइल को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है सही मानों में तो हिजबुल्ला है जिसने उनको चने चने ना को चने चुनवा दिए, और हमास की भी मदद ईरान कर रहा है, हमास के अंदर इतनी सलाहियत आ गई कि उसने 12 दिन के अंदर 4,000 रॉकेट फायर कर दिए। तो ये तो ऐसा है कि उम्मत मुस्लिमा चाहे या ना चाहे, लेकिन उनकी क़यादत और रहबरियत इस वक्त मकतब तशय्यु के हाथ में है। जो आलम इस्लाम के दिल की आवाज़ है वो वहीं से आती है, मक्के मदीने से नहीं आती, खा वो तौहीन रिसालत हो, तौहीन कुरान हो, या कोई और मामला हो, फ़लस्तीन का मसला हो या कश्मीर का मसला, म्यांमार का मसला हो या किसी और जगह का, आप देखेंगे कि उम्मत मुस्लिमा के दिल की आवाज़ जो है वो तशय्यु के रहबरियत की तरफ से आती है। कुछ लोग इसलिए मुखालिफ हैं कि इस निज़ाम से मकतब तशय्यो को फ़ायदा पहुंचा, इनकलाब इस्लामी के बाद तशय्यो से लोग वाकिफ़ हुए, शिया लिटरेचर जो पहले दस्तियाब नहीं था पूरी दुनिया में दस्तियाब है, इंटरनेट पे देखें तो एक किसी टॉपिक को आप सर्च करें शिया आर्टिकल्स की भरमार है उसके अंदर, उर्दू में, इंग्लिश में, अरबिक में, पर्शियन में, लोकल लैंग्वेजेस में, दुनिया भर से तल्लाब जो हैं वो जाते हैं कुम में, वहाँ तालीम हासिल करते हैं, फिर वो वापस जाते हैं और अपने इलाके में तबलीग करते हैं, सुन्नी भी जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, सुन्नी बतौर सुन्नी के वहाँ रह सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है उनके ऊपर, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाते हैं अक्सर, फिर वो मुबल्लिग बन जाते हैं। एक शेख ज़रज़की को देखें कि उन्होंने क्या किया, नाइजीरिया के अंदर 2 करोड़ अफराद को शिया कर दिया, मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत तेज़ी के साथ लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और मकतब तशय्यो को अख्तियार कर रहे हैं, पढ़ के लिख के समझ के गौर फिक्र करके इस मकतब की तरफ लोग आ रहे हैं, इससे बहुत से लोगों को के तकलीफ है। इससे पहले हमारे सुन्नी भाई तबलीग करते थे, वो जाते थे लोटा लेके बिस्तर लेकर और वो मस्जिदों में जाते थे, वो जेलों में जाते थे यूरोप में, अमेरिका में, और कुछ लोगों को मुसलमान भी कर दिया करते थे, लेकिन इस वक्त जो मकतब तशय्यों का निज़ाम है, एक इनकलाबी निज़ाम जो तागूत के मुकाबले में डटा हुआ है, इससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं और इस तरफ आ रहे हैं तो जाहिर है कि जिनको अपने मकते फिक्र की कमजोरी नजर आ रही है और वो जो समझते थे कि 1,500 साल से हमने शियों को आलम इस्लाम से काट के रख दिया, हमने उनको छठी उंगली करार दिया, आज एकदम तशय्यो उरूज की तरफ जा रही है। और वो जो जॉर्डन का किंग था उसने कहा था एक शियाइट क्रेसेंट जो है नमूदार हो रहा है, एक हिलाल तशय्यो नमूदार हो रहा है, और अब वो हिलाल तशय्यो जो है वो हाफ मून में तब्दील हो गया है। इट इज़ नो मोर ए क्रेसेंट, इट हैज़ बिकम ए हाफ मून। तो अब लोग खौफजदा हैं उस दिन से जिस दिन ये फुल मून बनेगा इंशाल्लाह। तो इस किस्म के लोग भी इस निज़ाम के मुखालिफ हैं और वो नहीं चाहते कि ये निज़ाम कामयाब हो। बाद शियों को भी तकलीफ है, कुछ उन शियों को तकलीफ है जो उलमा की क़यादत से, जिनको चिढ़ है उलमा से, उनके नामों से, अमामा वालों से, हौज़ा इलमिया से, फलां, ये एक खास तबका है, गिरोह है शियों के अंदर, और वो मुखालिफ है। अब वो मुख्तलिफ तरीके से, कभी वो खुम्स की मुखालफत करता है, कभी तकलीद की मुखालफत करता है, कभी इज्तिहाद की मुखालफत करता है, कभी विलायत फकीह की मुखालफत करता है, इन जनरल वो उलमा की मुखालफत करता है। तो ये जो लोग हैं, ये पहले जैसे हमारे यहाँ बाद अल्लामा थे हर तरफ, अब अल्लामा का दौर आस्ते आस्ते ख़त्म होता जा रहा है, पुराने अल्लामा दुनिया से गुजर रहे हैं, नए जो आ रहे हैं वो उनकी जगह ले नहीं पा रहे हैं। तो हर जगह आप देखें, इवन मजालिस में देखें आप, तो बड़े बड़े इज्तिमाआत जो हैं वो अमामा वालों के हाथों में हैं। तो ये चीज़ें बहुत से लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं हैं, इसलिए वो इन उलमा के भी मुखालिफ हैं, इस निज़ाम के भी मुखालिफ हैं, और तकलीद इश्तिहाद और खमोस और ये सब इन चीज़ों के मुखालिफ हैं, और उनको इन चीज़ों से तकलीफ हो रही है। तो मुख्तलिफ तरह के लोग हैं जो इस निज़ाम विलायत फ़कीह के मुखालिफ हैं, इसके बावजूद 40 साल से ये निज़ाम चल रहा है और कामयाबी के साथ चल रहा है, और इंशाल्लाह ये इमाम ज़माना के ज़हूर का मुकदमा बनेगा। बात ज़रा आज लंबी हो गई माजरत के साथ, लेकिन मैं चाह रहा था किसी नतीजे तक पहुंचा दूं, तो अब आपके सवालात जो हैं उसके लिए मैं हाजिर हूं। तो इंशाल्लाह फिर कभी किसी और टॉपिक पे मौका मिलेगा तो गुफ्तगु करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
जी, किसी का सवाल है तो हैंड रेज करें। अगर एक चैट में सवाल आया, वली फकी क्या जनाब हसन नसरुल्ला को भी माना जा सकता है?
देखें, जो जिस निज़ाम विलायत फकीह की हम बात कर रहे हैं, इसमें इस्लामी हुकूमत का क़याम है। हसन नसरुल्ला ने कोई हुकूमत का क़याम नहीं किया है, बल्कि हसन नसरुल्ला एक इलाकाई कायद हैं, लीडर हैं, रहबर हैं एक मखसूस एरिया के, और उन्होंने कोई इस्लामी हुकूमत क़ायम नहीं की है, इसलिए वो वली फकीह नहीं है, ना वो खुद दावेदार हैं वली फकीह होने के, वो तो खुद रहबर मुअज़्ज़म को अपना सब कुछ समझते हैं।
जी, साजिदा सवाल कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम आगा साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम।
माशाल्लाह, बहुत अच्छी मालूमात आपने फराहम की, काफी चीजें जो हैं वो क्लियर हुई हैं। एक सवाल जो अक्सर मुखालिफीन की तरफ से किया जाता है, जो उल्मा और मुज्तहिदीन के मुखालिफ हैं, उनकी तरफ से अक्सर ये सवाल आता है कि मुज्तहिदीन का आपस में इख्तलाफ क्यों होता है, यानी फिकही मसाइल में जैसे मुख्तलिफ राय होती है। तो अगर हम उनको एक वो आसान वाली दलील पेश भी करते हैं कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर डॉक्टर आपको एक ही मेडिसिन नहीं देता बल्कि मुख्तलिफ मेडिसिन से इलाज करता है इस तरह से, तो इस दलील को भी नहीं वो मानते। तो उनके लिए रहनुमाई फरमा दें कि किस तरह हम उनके सवाल का जवाब दे सकते हैं।
अच्छा, वैसे इस मसले को पहले लेक्चर में मैंने बयान किया है, और जाहिर है अगर कोई शख्स तय कर लेगा नहीं मानना है तो उसको कोई इलाज नहीं है किसी के पास। ये बात बहुत आम सी बात है, आजकल पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को समझते हैं कि किसी भी शोबे में, किसी भी फील्ड में जब आप रिसर्च करेंगे तो उसकी फाइंडिंग मुख्तलिफ होती है। और मैंने साइंस से भी इसकी मिसाल दी कि ये अख्तिलाफ जो है साइंटिस्ट के दरमियान भी है। एक एक इशू के ऊपर 10-10 थ्योरियाँ हैं। ये थ्योरीज क्या हैं? ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट की आरा हैं, ख्यालात हैं, नज़रियात हैं। मिसाल के तौर पर आप जो हैं वो क्रिएशन ऑफ सोलर सिस्टम को ले लें, इसके ऊपर 10 मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। बिग बैंग इज़ वन ऑफ देम, ऑल्दो बिग बैंग इज़ मोर पॉपुलर, लेकिन ये एक थ्योरी है। तो साइंस के अंदर भी इसी तरह है, और शोबों के अंदर भी हैं। आप फिलासफी में चले जाएँ, आप इकोनॉमिक्स में चले जाएँ, तो मेडिकल साइंस की मिसाल आपने दी, ये तो वाजह है मेडिकल साइंस की मिसाल। तो जहाँ पे भी रिसर्च होगी, जहाँ भी तहकीक होगी, तो वहाँ पर इख्तलाफ होगा। ये इख्तलाफ वो है जो इल्मी इख्तलाफ है, ये सोसाइटी के अंदर एक हेल्दी एक्टिविटी है, इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए। जिस तरह सुन्नियों में हो गया ना कि बस इमाम अबू हनीफा की राय पर सब लोग चल रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, तो उनके यहाँ जो फिक्र है वो जमूत का शिकार है। हमारी फिक्र जो है माशाल्लाह वाइटल है, क्योंकि हर दौर के फुका आ रहे हैं और अपनी आरा से इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा अप टू डेट हैं। तो ये इख्तलाफ बुरी चीज़ नहीं है, जो चीज़ बुरी है वो है तफरका। कुरान करीम ने कहा वला तफरकू वला तनाज़ऊ, तनाज़ऊ तनाज़ा ना करो, तफरका ना करो। इख्तलाफ से मुराद इख्तलाफ इल्मी है, ये इख्तलाफ इल्मी एक हेल्दी एक्टिविटी है, ये होते रहना चाहिए। तशय्यु की तारीख में 1500 साल में ये रिवायत रही है, इसलिए इसीलिए कहा गया है कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट लर्नेड है ना उससे रुजू करो, क्योंकि उससे गलती का इम्कान कम।
जी जज़ाकअल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया।
वेलकम।
अस्सलाम वालेकुम आगा साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम।
मेरा सवाल आपसे मरजियत के बारे में यह है कि जो वली फकी हैं, मरजियत ने वली फकी क्या उन उस अकीदे को मानना, क्योंकि मुज्तहिद को मानना एक और चीज है लेकिन विलायत फकी को मानना एक और चीज है, तो वली फकी पे एतकाद रखना क्या वाजिबात में से है? जैसा कि अगर हमने मुज्तहिद की पैरवी नहीं की तो हमारे अहकाम जो है वो खतरे में पड़ जाते हैं। और आयतुल्ला मिसबा यज़दी की एक किताब है जिसके अंदर उन्होंने जो विलायत फकी है उसको बिल्कुल इमाम मासूम की शबीह करार दिया है, कि जैसे उनकी शम्मा है उनकी मिसाल और शबीह करार दिया है। तो क्या हम विलायत फकी को अगर मानना वाजिब है तो उसमें हम इस तरीके से विलायत फकी को कबूल करें जैसा कि उन्होंने बयान किया है कि बिल्कुल एज इट इज इमाम मासूम की जगह पे बैठना है और ऐसे ही उनसे जो है वो तबीयत करना वाजिब है? इन दो सवालों के ऊपर प्लीज आप रोशनी डालिएगा, शुक्रगुजार होंगे।
देखें, जो बात हम भी बयान कर रहे हैं मुसलसल, उसमें यह है कि जमाने गैबत इमाम में मकतब तशय्यो की जो क़यादत है, रहबरियत का जो निज़ाम है, वो विलायत फकीह। ठीक है, अब अगर किसी भी दौर का कोई शिया एक लीडरशिप को ना माने तो वो शिया मज़हब से खारिज तो नहीं होगा ज़ाहिर है, लेकिन वो उस मकतब के अंदर जो एक स्ट्रेंथ है जिस चीज़ से इस लीडरशिप से, तो उसका वो हिस्सा नहीं होगा, उसका वो पार्ट नहीं होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर इस वक्त जैसे लबनान के अंदर जो है वो जो शिया रहते हैं जनूबी लबनान में, तो उनकी एक लीडरशिप है, वो लीडरशिप है हिजबुल्ला, एक मजबूत पार्टी है, हसन नसरुल्ला उसके लीडर हैं। अच्छा, अब कोई शख्स अगर हसन नसरुल्ला के मुखालफत करता है, इसका मतलब ये है कि तशय्यो की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है लबनान में, एक्चुअली उसकी मुखालफत कर रहा है वो। ठीक है, ये बात सिर्फ सारा से नहीं है कि हम इस थ्योरी को मानते हैं और कोई नहीं मानता है, जो जो मान रहे हैं वो असल में उस लीडरशिप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और जो नहीं मान रहे हैं वो असल में उस लीडरशिप को कमजोर कर रहे हैं। ठीक है, एक तो बुनियादी बात ही है, मानने और नहीं मानने का मतलब वो नहीं है कि किसी ने इमाम माना किसी ने नबी माना, नहीं माना तो दिन से खारिज हो जाएगा, नहीं वो बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर मानने का मतलब ये है, जी,
तो इसके अंदर जैसे कि आयतुल्ला सिस्तानी का है फतवा, जैसे चांद के हवाले से आपने बयान किया, और उसमें उन्होंने इजाजत नहीं दी अपने जो है मुकल्लिदीन को कि वो इवन अगर वली का भी, इसके वली फकीह का भी अगर हुक्म आए तो इजाजत नहीं देते कि उनकी तरफ रुजू करें, इसीलिए जो वो आयतुल्ला सिस्तानी वालों ने अलग से ईद की, जैसा कि आपने खुद भी बयान किया। तो इसके अंदर फिर विलायत फकीह को मानना या उसको स्ट्रेंथन करना, ये किस जुमरे में आता है? क्योंकि जब हमारा मुज्तहिद अगर जो आयतुल्ला सिस्तानी को फॉलो करते हैं उसको इजाजत नहीं देते, तो ये किस तरह से इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे फिट होता है ये?
देखिए, मैं जिस चीज को बार बार बयान कर रहा हूँ कि विलायत फकीह जो है वो लीडरशिप है, लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब ये है कि उसका एक पॉलिटिकल रोल है, तो जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो इज्तिमाई मामलात हैं, उनमें मानना जरूरी है। अच्छा, उनमें जो है, जो आप अगर अगर फर्ज करें कि आप किसी और मुज्तहिद की तकरीर करती हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस मुज्तहिद की भी आप तकरीर करती हैं उसका पॉलिटिकल रोल नहीं है, पॉलिटिकल इश्यूज में वो राय नहीं देगा, उसमें फिर जो है वो रहबरियत ही की तरफ रुजू किया जाएगा। अगर वो राय दे रहा है, अगर वो मुश्तहिद भी राय दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो भी एक पॉलिटिकल रोल को मानता है। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त आयतुल्लाह सिस्तानी है, तो आयतुल्लाह सिस्तानी के नजरियात भी बिल्कुल कम वेश वही है विलायत फकीह वाले, जो जो इमाम खुमैनी वाले। अलबत्ता उन्होंने हुकूमत कायम नहीं की इसलिए कि मुमकिन नहीं है इराक में हुकूमत कायम करना, इराक की डेमोग्राफी डिफरेंट है, वहाँ सुन्नी है, वहाँ कुर्द है, वहाँ दुश्मन पीछे लगा हुआ है कि इराक को तोड़ दे, इससे बकरे कर दे, इसलिए मुनासिब नहीं है कि वहाँ अपनी हुकूमत का ऐलान करें वो। लेकिन आप देखें कि एक पॉलिटिकल रोल वो प्ले कर रहे हैं, वक्तन फवक्तन प्ले करते रहते हैं, बहुत क्रिटिकल आर्स में, कि जबकि इराकी कौम को सख्त ज़रूरत पड़ती है, उसमें एक उनका बयान आता है और वो बयान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, या अब अभी आप देख लें कि इसराइल के प्रोडक्ट के बारे में जो आयतुल्लाह सिस्तानी ने बयान दिए, तो इसका मतलब ये है कि आयतुल्लाह सिस्तानी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक फकीह के एक पॉलिटिकल रोल के कायल हैं। ठीक है, वो कि अभी हुकूमत उन्होंने कोई कायम नहीं किए। अच्छा, अब जो इज्तिमाई मामलात आएंगे आलमी सतह पर, उसमें वो इजहार ख्याल बराह रास्त नहीं करेंगे। आप नोट करें इस चीज़ को कि उसमें जो बयान आएगा तो वो रहबर मौजम ही की तरफ से आएगा, और आयतुल्लाह सिस्तानी का जो भी बयान आएगा आप देखें वो हमेशा उनकी तायद ही में आएगा। यानी अगर इसराइल के खिलाफ मौकफ उन्होंने अख्तियार किया है तो उन्होंने वो वही मौकफ अख्तियार किया, और इसराइल को गासिब उन्होंने भी समझा, अमेरिका के मौजूदगी के उन्होंने मुखालफत की, उन्होंने भी मुखालफत कर दी। तो ये हम आहंगी होगी, ये सवाल एक किया जाता है ना कि अगर दो जगह हुकूमत कायम हो जाए तो क्या दोनों को मान लिया जाएगा? जी हाँ, इस जमाने में अगर दो जगह हुकूमत इस्लामी कायम की जाएगी तो दोनों को इस्लामी करार दिया जाएगा, क्योंकि इस्लाम की असल रूह के मुताबिक ये नहीं है, उसलन तो एक ही जगह होना चाहिए। लेकिन चूंकि इस वक्त सरहदें बन चुकी हैं, ये सरहदें खत्म नहीं हो सकती, ये सरहदें इंशाल्लाह इमाम ज़माना आके खत्म करेंगे, तो इसलिए इस वक्त अगर किसी और जगह पर भी एक हुकूमत कायम हो जाएगी वो इस्लामी हुकूमत कहलाएगी, और वो शख्स वहां का जो हाकिम होगा वो भी वली फकीह कहलाएगा। अलबत्ता एक से ज्यादा वली फकीह होने की सूरत में उनके दरमियान ऐसी हम आहंगी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, एक ऐसा कॉन्फेडरेशन होगा कि इज्तिमाई मामलात में उम्मत मुस्लिमा के जो इज्तिमाई मामलात हैं उसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक ही होगा, और यही हम नजर आ रहे हैं हमें कि लीडरशिप बज़ाहिर मुख्तलिफ नजर आ रही है बाज़ जगहों पर। यमन की लीडरशिप और है, इराक की लीडरशिप और है, लबनान की लीडरशिप और है, पाकिस्तान की और है, लेकिन जो इज्तिमाई मामलात हैं उम्मत मुस्लिमा के उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है। आपके सवाल का जो एक हिस्सा रह गया ना वो भी मैं अर्ज करूं कि ये जुमला सुनते हुए बहुत अजीब लगता है बहुत से लोगों को, आपने भी कोट किया इस तरह आयतुल्लाह मिसबाह यजदी का जुमला, मुझे नहीं पता कि एक्यूरेट यही जुमला है या क्या है या तर्जुमा है, लेकिन बहरहाल ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब सी लगती है कि वो उसी सीट पर बैठता है जिस सीट पर पैगम्बर बैठते हैं, जिस सीट पर अमीर मोमिन बैठते हैं, उसकी अताज इसी तरह होगी जिस तरह पैगम्बर की अताज होती है, जिस तरह अमीर मोमिन की अताज होती है, तो ये जुमला सुन के कन्फ्यूजन होती है थोड़ी सी। वरना देखिए बात यह है कि ये सारी बहस जो है वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर है, ना। और जब पॉलिटिकल लीडरशिप की बात होती है, जब हुकूमत इस्टेब्लिश करने की बात होती है, जब इलाही कवानीन के निफास की बात होती है, तो हर दौर के जो इस्लामी हुकूमत का सरबराह होगा उसको वो तमाम इख्तियार देने पड़ेंगे कि जो इख्तियार अमीरुल मोमिनीन के पास थे या पैगम्बर अकरम के पास थे। इज्तिमाई मामलात में पैगम्बर अकरम का तो मकाम तो ये है ना कि वो तो अफजल खलायक हैं, उनके पास तो एक विलायत तकवीनी भी है जो मुश्तहिद के पास नहीं, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो बात हो रही है कि इज्तिमाई मामलात में, सियासी मामलात में, कवानीन के नफाज में अगर एक 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 जुर्म है जिसकी सजा 100 कोड़े हैं, अगर पैगंबर के पास वो मुजरिम लाया जाएगा तो 100 कोड़े मारेंगे, अमीरुल मोमिनीन के पास लाया जाएगा तो क्या 75 मारेंगे, वो भी 100 मारेंगे, अगर उसको वली फकीह के पास लाया जाएगा तो कितने मारेंगे, वो 50 मारेंगे, नहीं वो भी 100 कोड़े मारेंगे, अगर उसको इमाम जमाना के पास पेश किया जाएगा तो कितने कोड़े लगाएंगे, 100 कोड़े लगाएंगे, क्योंकि खुदा की तरफ से हुक्म यही है। तो जब तक आप उस शख्स को एंटाइटल नहीं करेंगे, स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, ऑथोराइज नहीं करेंगे कि वो उसके पास वही अथॉरिटी हो, वही पावर हो जो इमाम के पास थी, तो वो कानून का निफाज किस तरह करेगा। तो ये बात जब दूसरे अंदाज से पेश की जाती है तो अजीब सी लगती है, लोग समझते हैं कि शायद वो हम उनको इमाम समझते हैं या पैगंबर समझते हैं, नहीं उनको इमाम नहीं समझते ना, उनको पैगंबर समझते हैं। विलायत तकवीनी और तशरी के बहस हम करके आए हैं शुरू में बहुत तफसील के साथ, लेकिन जब तक उनको ऑथोराइज नहीं किया जाएगा, वो पावर नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक ये कानून का निफाज नहीं कर सकते।
बहुत बहुत शुक्रिया, ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हुआ, लेकिन मैं फिर दोबारा से इंशाल्लाह ये तुलम इस्माइल जी की जिस किताब से पढ़ा था उसको वो करके और जो मिसाल उन्होंने दी थी वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
मैं थोड़ा इस मौजू से हट के मेरा एक सवाल है, मेरे बच्चे जो हैं वो मतलब दीन है और सब आते हैं, लेकिन जब तक बच्चे थे तब तक उनको जिस लेवल से बच्चों को समझाया जाता है वो था, लेकिन अब जैसे एक पॉइंट इतने से बड़े सवाल पूछते हैं, और बेटा तो काफी बड़ा हो चुका है माशाल्लाह, कॉलेज में है, वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, तो अब मुझसे इस तरह के सवाल कि अल्लाह की हकीकत के बारे में, काफी नूर है वो, उससे तल्क है, खुद नूर है, लेकिन अब जैसे या तो कोई ऐसी कोई तौहीद के मुतालिक किताबें की जाहिर से बात है कि अकायद है ये पहला मौजू है हमारा अकीदा पहले, कि उसको हमको स्ट्रांग करना है, फिर आगे वो मासूमीन पर भी उसको अकीदा है और अहले बैत पर भी है, लेकिन अब ये तौहीद के बारे में मैं उनके क्वेश्चन को किस तरह से उनको क्लियरिफाई करूं, क्योंकि आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, मैं नहीं उनको बता सकती, तो मैं किस तरह से उनको ये आंसर दूं कि वो सेटिस्फाइड हो सके, या कोई ऐसी बुक अलामा की इसमें जिसमें तौहीद के बारे में डिटेल से उस चीज का हो। और एक सवाल थोड़ा सा और है, अभी ये मेरे सवाल दोनों आपके जो मौजू चल रहा था उससे बिल्कुल अलग है, कि जैसे लोग बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, SIP है या FD है या ये ट्रेडिंग शेयरिंग का है, या फॉरेन करेंसी में भी कुछ लोग करते हैं वो क्रिप्टो करेंसी टाइप से, तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ तक जायज है ये, या मतलब कैसे लोग करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट उसके लिए सही है नहीं, क्योंकि मौजूदा दौर में इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है कुछ फ्यूचर के लिए, या बच्चों की स्टडी ही इतनी ज्यादा महंगी हो गई है, फॉरेन स्टडीज के लिए बच्चे जाते हैं, तो इंसान एक अपनी सैलरी उस पर एडजस्ट नहीं कर सकता, तो अगर इस तरह की कोई पॉलिसी कर रहा है तो वो कहाँ तक सही, बस आपसे कुछ रहनुमाई चाह रहा
है। असल में देखें, ये जो आपने पहला सवाल किया है ना कि बच्चों की तरबियत, तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसको कोर्स करवाएं, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं हमारे जो कोर्स करवा रहे हैं, ऑनलाइन भी करवा रहे हैं, तो अकायद की भी बास क्लासें हो रही हैं, मैं खुद भी ले रहा हूँ बास क्लासें, तो एक कोर्स की सूरत में जब तक कि उसको एक कम्प्रिहेंसिव कोर्स वो नहीं पढ़ेगा तो उस वक्त तक ये बातें समझ में नहीं आएंगी। जो हमारे मजलिसें हैं या जो हमारे और रिश्ता के मुख्तसर शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं, तो इसमें वो सारी बातें नहीं हो पाती, ठीक है। अकायद की मसलन एक क्लास, एक संडे क्लास में लेता हूँ 2 घंटे की, तो पूरे साल में 50 लेक्चर्स होते हैं 2-2 घंटे के, اس کے باوجود بھی وہ ساری چیزیں کور نہیں ہوتی ہیں, بہت تیز تیز کرنا ہوتا ہے. تو جب تک کہ اس طرح کی کوئی چیز وہ نہیں کرے گا اس وقت تک, اسی طرح عقائد کے ساتھ ساتھ احکام ہیں یا حلال و حرام ہے, فقہی احکام ہیں, اخلاق ہیں, تو کوشش کرنا چاہیے کہ آج کل تو آن لائن کی وجہ سے چیزیں کافی آسان ہو گئی ہیں اور انٹرنیٹ پہ چیزیں پڑی ہوئی بھی ہیں, اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پوری پوری سیریز مل جائے گی لیکچرز کی, اردو میں, انگلش میں, جو زبان میں اس کو آسان لگے پوری پوری سیریز موجود ہے. تو ان کو یا تو تھوڑی ڈٹرمینیشن کے ساتھ ان کو سن لیں, پڑھ لیں جو ریلیونٹ چیزیں ہیں, تو یہ کام جو ہے یہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے, نہ میڈیا ہمارے ساتھ ہے, نہ سلیبس کی کتابوں میں ہماری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, نہ ہماری مجلسوں میں یا جمعے کے خطبوں میں یہ باتیں اس طرح ترتیب سے بھی نہیں کی جاتیں کہ وہ کانسیپٹ اس کا پورا کلیئر ہو. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کورس کا انتظام کیا جائے. دوسرا جو سوال ہے وہ تو خیر بہت ہی وسیع سوال ہے, اس کا پوری طرح جواب دینا بہت مشکل ہے, لیکن اس میں آپ کو اپنے مجتہد سے رجوع کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کہاں کہاں انویسٹمنٹ کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے, اگر کہیں پر پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے تو وہ تو ہر طرح سے الاؤ ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اگر کہیں پر فکس ڈپازٹ ہے, ٹرم ڈپازٹ ہے, جہاں پر کہ پیسے رکھوائے جاتی ہیں اور ایک فکس اماؤنٹ مل جاتی پہلے سے طے ہوتا ہے, تو اس کے لیے پھر مشتہد یا اس کے نمائندے سے اجازت لینی پڑتی ہے, کیونکہ وہ ہمارے یہاں مجھول المالک مال سمجھا جاتا ہے, پرائز بانڈ ہے یا اس قسم کی چیزیں, تو اجازت لے کے, تو وہ جب اجازت لی جاتی ہے تو وہ اجازت اس طرح ہوتی ہے کہ اس کا مثلا 50% آپ جو ہے نا وہ کسی غریب کو دے دیں, 50% آپ استعمال کر سکتے ہیں. تب پروفٹ کا ریشیو آلریڈی اتنا کم ہے پاکستان میں, تو میکسیمم جو ریٹائر لوگ ہیں ان کو بھی جو مل رہا ہے شاید ایسے ہی کوئی 12% تک ملتا ہے. اب 12 میں سے اگر 6% آپ دے دیں گے غریب کو تو آپ کے پاس کیا بچے گا, تو اس لیے انویسٹمنٹ کی جو اسکیمیں ہیں وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو, بہت زیادہ فیزیبل نہیں ہیں. کرپٹو کرنسی کے بارے میں مشتہجین کی رائے جو ہے ابھی تک نہیں آئی ہے کہ اس کو انہوں نے اجازت نہیں دی ہے, اور ایک آدھ کسی مشتہج نے اجازت دی بھی ہے تو اس شرط کے ساتھ کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے لوکل قوانین اگر اجازت دیتے ہیں تو آپ کرپٹو کرنسی میں بزنس کر سکتے ہیں, انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, مائننگ کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ کرنسی جو ہے اس کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے. جیسے کرنسی ہوتی ہے نا, اس کے پیچھے اسٹیٹ بینک ہوتا ہے یا کوئی ادارہ ہوتا ہے, گورنمنٹ ہوتی ہے, کرپٹو کرنسی کے پیچھے کوئی نہیں ہے بلکہ پیچھے ایک مافیا ہے, اور ابھی حال ہی میں تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو ریٹ کو ایک دم اوپر جا رہی تھی ایک دم نیچے گرا دیا, تو یہ مافیا ہے جس کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں. جب تک کہ ریاستیں اس کو ریکوگنائز نہیں کریں گی باقاعدہ, اس وقت تک ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوگا.
آداب صاحب, السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب, رفعت رضوی بول رہے ہیں حیدرآباد, رفعت رضوی بول رہے ہیں حیدرآباد سے,
ماشاء اللہ.
ڈاکٹر صاحب, سوال ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا حکمت والا ہے, پروردگار نے, میرے رب نے 11 اماموں کو انسانوں کے درمیان رکھا, اور حالانکہ پرآشوب دور میں سبوں کو شہادت نصیب ہوئی, تو ہمارے 12 امام مولا امام زمانہ علیہ السلام کو پرورۂ غیبت میں رکھنے کی اس میں کیا حکمت پروردگار کی تھی, یہ ہم تھوڑا جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے. ویسے تو ہم نے پڑھا سنا بھی ہے, مگر آپ کی زبانی تھوڑا اور سننا چاہتے ہیں ہم کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے, کیونکہ 11 اماموں کو پروردگار نے رکھا ایسے پرآشوب دور میں اور سب کو شہادتیں نصیب ہوئیں. ویسے تو ہم نے پڑھا ہے, مگر آپ تھوڑا سا بتائیں گے ہم سننا.
اچھا, میں نے ایک جگہ امام زمانہ پہ ایک لیکچر دیا, آخر میں یہ تھا کہ بھئی آپ لوگ سوالات کریں, تو ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا طالب علم, اور اس نے یہی سوال کر دیا کہ امام زمانہ کو خدا نے غیبت میں کیوں بھیج دیا, کہ خدا ان کو بھی شہید کروا دیتا اور امام بھیج دیتا. تو میں نے ایک مثال اس کو دی جو میں نے مثال کہیں اور سنی تھی. میں نے کہا دیکھو, ایک محلے میں ایک بجلی کا کھمبا تھا, اس کھمبے میں ایک اسٹریٹ لائٹ لگائی گئی, محلے کے بچوں نے کیا کیا, پتھر مار کے اس لائٹ کو توڑ دیا. کچھ دنوں کے بعد وہ جو بجلی والا ادارہ ہے اس نے آ کے ایک اور اسٹریٹ لائٹ لگا دی, तो क्या हुआ कि बच्चों ने फिर पत्थर मारा, फिर तोड़ दिया। फिर कुछ दिनों के बाद एक लाइट और लगाई गई, फिर तोड़ दिया। तो बार बार जो है वो बच्चे उस मोहल्ले के शरीर बच्चे वो उस स्ट्रीट लाइट को तोड़ते रहे। तो उसके बाद जो म्यूनिसिपलिटी का अदारा था उसने जनाब लाइट नहीं लगाई। जब लाइट नहीं लगी, अंधेरा होने लगा, तो कुछ लोग गए उस इदारे में और जाके उन्होंने कहा कि भाई आप हर जगह लाइटें लगा दें, हमारे मोहल्ले में आप लाइट क्यों नहीं लगाते स्ट्रीट लाइट। उन्होंने कहा नहीं भाई आपके मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट नहीं लगेगी क्योंकि आपके मोहल्ले के बच्चे बहुत शरीर हैं और वो लाइट तोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या बात हो गई, अगर बच्चे शरीर हैं आपके पास तो लाइट है ना, आप लगाते रहें। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, अब जो लाइट लगेगी वो इस शर्त के साथ लगेगी कि आप इस बात की गारंटी देंगे कि कोई उस लाइट को नहीं तोड़ेगा, आप खुद सेफ गार्ड करेंगे, आप उसकी हिफाजत करेंगे, फिर हम लाइट लगा देते हैं। तो देखें पहले इमाम से लेके 11वें इमाम तक इस उम्मत ने यही किया, खुदा ने अपनी हुज्जत को भेजा, उम्मत ने उनका साथ नहीं दिया, उनको कैदोबंद में रहना पड़ा, उनको शहीद कर दिया गया, किसी को तलवार से, किसी को जहर से। अब खुदा ने अपनी 12वीं हुज्जत को गैबत में भेज दिया इस शर्त के साथ कि अब इसको उस वक्त इसने जहूर अता करेगा जब उम्मत खुद उसकी नुसरत करने पर आमादा होगी, उम्मत तैयार हो जाएगी तो खुदावंद आलम उनको जहूर का इज्जन अता फरमाएगा। और जब वो जहूर फरमाएंगे तो साथ देने वाले अंसार व आवान जो हैं वो इतने तादाद में होंगे कि वो इस माशरे को अदल इंसाफ से पुर कर देंगे। जब तक के वो लोग तैयार नहीं होंगे खुदा की तरफ से इज्जन जहूर नहीं मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द रीजंस।
ये जो आपने अभी मिसाल दी हमने भी सुनी हुई है, हमने पढ़ी भी है लोगों, मैं हम ये चाह रहे थे कोई ऐसी बात बताएं कि जो ये हम तक काफी लोगों ने सुनी, हमने भी सुनी हुई है, एक ही मिसाल सुनी, हम और भी कुछ सुन मतलब चाहते हैं कि कोई और भी कोई वजह इसमें, परवरदिगार की हिकमत इसमें, और कोई भी एक यही वजह तो नहीं हो सकती, मतलब कुछ और भी ये हम चाह रही है, हमने भी सुनी हुई है और ये बहुत अच्छा।
देखें बात यह है कि जो इमाम गैबत इमाम है इसके बारे में रवायात में है कि ये असरार इलाहिया में से है, असरार इलाहिया में से है, ठीक है। और इसके असरार से भी पर्दा उसी वक्त उठेगा जब इमाम जहूर फरमाएंगे। जो जिन लोगों ने इस मौजू पे जो बातें लिखी हैं उनमें से कई चीज़ें हैं जिनमें से सर फहरिस्त यही बात है कि उम्मत ने चूंकि साथ नहीं दिया। देखिए जितने भी मसलन इमाम अली अलैहिस्सलाम को हुकूमत नहीं मिली पैगंबर के बाद, क्यों? अंसार आबान ने साथ नहीं दिया, लोगों ने साथ नहीं दिया, जो लोग गजीर के मौके पर मौजूद थे उन्होंने साथ नहीं दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सुलह करनी पड़ी, क्यों? अंसार आबान की कमी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए सिर्फ उनके साथ 72 अफराद थे, क्यों? अंसार आबान नहीं थे। आइम्मा तायिन को कैद बंद में रहना पड़ा, इमाम हुसैन कासिम अलैहिस्सलाम 14 साल तक कैद में रहे, क्यों? अंसार आवान की कमी थी। इमाम ज़माना गैबत में क्यों गए? अंसार आवान की कमी थी। इमाम के ज़हूर में ताखिर क्यों हो रही है? अंसार आवान की कमी है, ठीक है। असल तो वजह ही है। देखिए एक बात और भी जो मैंने भी अपने किसी इसी सीरीज के अंदर बयान किया है कि अम्बिया और आइमा अलैहिस्सलाम को जो खुदा ने एक अल्टीमेट पर्पस के साथ भेजा है वह है आदलाना माशरे का कयाम। लेकिन उस आदलाना माशरे के कयाम में उम्मत की पार्टिसिपेशन जरूरी है। लकद अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात व अनज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, कि हमने तो रसूलों को भेजा निशानियों के साथ और उनको उनके साथ किताब और मीज़ान को भी उतारा ताकि लोग इंसाफ के लिए उठ खड़े हों, लोग साथ देने के लिए आमादा हों। यानी बजाय इसके कि हम ये कहें कि खुदा ने उनको क्यों गैबत में भेज दिया, हमें ये पूछना चाहिए कि क्यों क्यों उनको गैबत में भेजना पड़ा। इसलिए भेजना पड़ा कि उम्मत ने साथ नहीं दिया, अगर उम्मत साथ देती तो यकीनन वो भी माशरे में वो किरदार अदा करते और वो जो आदलाना निज़ाम का कयाम है उसी वक्त कर देते। वो बजाय घूम फिर के देखें वही आ गए ना, एक ही वजह है, आप उसको उस तरह बयान कर दें इस तरह बयान कर दें।
डॉक्टर साहब ये हजरत ईसा के बारे में भी हम यही राय रखेंगे फिर?
नहीं, ईसा अलैहि सलाम का मामला ये नहीं है। ईसा अलैहि सलाम का मामला तो यह है कि अल्लाह ने उनको उठा लिया। अब ईसा अलैहि सलाम का कोई रोल नहीं है। ईसा अलैहि सलाम जो हैं वो ज़मीन पे अबले तो नहीं है, अल्लाह ने उनको आसमान पे उठा लिया। और अब वो जो आएंगे वो सिर्फ इमाम ज़माना की ताईद के लिए आएंगे फ़कत, उनका कोई लीडरशिप वाला रोल नहीं होगा ईसा अलैहि सलाम का। ईसा अलैहि सलाम जब आएंगे तो उम्मती बन के आएंगे, नबी तो वो रहेंगे क्योंकि नबी तो नबी रहता है, नबूवत उनसे छीनी नहीं जाएगी। लेकिन बहसर एक उम्मती के आएंगे, उनकी नबूवत का दौर नहीं होगा, तो सिर्फ वो ताईद के लिए आएंगे।
उनकी और गैबत और इमाम जमाना की गैबत सेम
नहीं, सेम नहीं है। इमाम जमाना की जो गैबत है वो इस तरह है कि आप इसी दुनिया में हैं और मोमिन से मुलाकात भी करते हैं, उनके काम भी आते हैं, मोमिन बाज़ औक़ात उनको देखता भी है लेकिन पहचान नहीं पाता। ठीक है,
और हज़रत ईसा, उनकी
ईसा अलैहि सलाम तो आसमान पर है, वो तो दुनिया में नहीं है, ना उनसे कोई मिलता है, ना वो किसी के काम आते हैं। तो जब तशरीफ लाएंगे तो उनका एक रोल होगा और बस, दुनिया के सारे उमूर जो हैं वो इमाम ज़माना देख रहे हैं, हमारे आमाल उनकी खिदमत में पेश किए जाते हैं, हमारी दुआएं हमारी इबादात उनके ज़रिए से खुदा की बारगाह में पहुंचती हैं। खुदा की तरफ से जो फैसले तकदीर के होते हैं शब कदर में वो इमाम के पास आते हैं। तो इमाम तो एक इमामत वाला रोल प्ले कर रहे हैं ना, एक तकवीनी विलायत तो उन्हीं की है ना, वो एक इमामत वाला एक रोल प्ले कर रहे हैं।
अगर एक सवाल मेरे पास आया था वो ये कि कुछ मुश्तहिदीन कहते हैं कि हम भी वली फकीह हैं, तो ये जो कुछ लोगों ने सवाल भेजा था मुझे प्राइवेट में, तो इस हवाले से आपके कुछ
हैं? वो जज्बात में उन्होंने कह दिया, लेकिन वो जो विलायत फकीह का जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो इस कॉन्सेप्ट को यकीनन समझते होंगे तो उसके मुताबिक वो वली फकीह तो नहीं है। यानी वली फकीह का मतलब ये है कि उनको विलायत सियासी वो हासिल नहीं है, क्योंकि वो किसी इस्लामी हुकूमत को कायम उन्होंने नहीं किया और ना किसी इस्लामी हुकूमत के वो सरबरा हैं। वो बाद में क्लैरिफिकेशन भी उसकी कुछ आ गई थी, तो वो मामला दरअसल थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है।
दूसरा सवाल ये आया था कि मजलिस खबरगान जो है उस हवाले से कुछ लोगों ने कंसर्न बताए थे कि अगर वो गलत मुश्तहिद या वली फकीह सिलेक्ट कर लें तो उस केस में क्या होगा?
देखिए, गलत का लफ्ज़ जो है ना वो खुद गलत है, क्योंकि असल में तो उस बॉडी में उस फोरम में जो उलमा मौजूद हैं वो सब जो हैं वो इस्लामी रियासत की सरबराही के शरायत पूरी करते हैं। ठीक है, अगर 10 हैं तो 10 के 10 पूरी करते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि गलत है, गलत तो कोई है ही नहीं उसमें। अब सिर्फ ये है कि ये सब के सब लोग वाजिद शराइत कहलाते हैं, ये सब के सब लोग वो हैं जो उस बेसिक कंडीशन को फुलफिल करने वाले हैं। अब इनमें से किसको प्रेफर किया जाएगा? इनमें से उसको प्रेफर किया जाएगा जो मौजूदा जो इस्लामी रियासत है उसको दरपेश चैलेंजेस को एड्रेस करने की ज्यादा सलाहियत रखता होगा, उसको ऑफर की जाएगी। ठीक है, यानी शायद तो सब पूरी कर रहे हैं लेकिन उस उनके अंदर भी वो शख्स के जो मौजूदा दौर में सबसे बेहतर तौर पर इन चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड कर सके, उसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी।
जी, लास्ट सवाल है।
जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
ये नमाज से मुतालिक है कि नमाज पढ़ने से बात है अहकाम और पहला पार्ट है, और ये है कि नमाज दिन का सुकून है। तो पहले हम लोग के वक्त में जो नमाजें बताई जाती थी,
आपकी आवाज जरा सही नहीं आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रही है।
मैं नमाज के मुतालिक बात कर रही हूँ।
जी जी बताइए।
जी, तो जी, मैं पहले जैसे बड़े बुजुर्ग नमाज सिखा दिया करते थे उमूमन और बच्चे सीख लेते थे, लेकिन अब जैसे सोशल मीडिया का जमाना है और नेट के थ्रू
और तमाम बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, तो उसमें नमाज की जो वाजिबात है कि काम इतनी मुद्दत का है और फिर रुको नहीं है, फिर इस तरह से बिल्कुल हमें जो है वो कयाम मुतसिल है और बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल हमें साकिन रह के नमाज पढ़नी है। तो जैसे हम बहुत सी चीजों में अब हमें गौर करते हैं कि हमारी जो अरकान थी वो उतनी एक्यूरेट नहीं थी, जो कि अब हमें पढ़ने या वीडियोज या प्रोग्राम के थ्रू समझ में आती है। तो उसके लिए क्या अगर हम इस्तग़फ़ार करके अपनी पिछली नमाजों की अल्लाह से माफी चाहते हैं और उसकी कबूलियत की दुआ करें तो वो ठीक है, या एक कैसे इसको इस चीज को हम सही करें कि हमें मुतमईन हों हम कि हाँ हमारी असली हो रही है। और एक बहुत शॉर्ट सा फोर्स के लिए है कि जैसे आजकल लिमिटेड इनकम है और हर चीज रहती है और बच्चों की एजुकेशन है, तो मतलब 5% का कुछ भी सेविंग नहीं हो पाती, तो ऐसी कंडीशन में हम फंड्स की अदायगी का किस तरह से उठा सकते हैं, ये क्या है हमारे लिए बस आप बता दें।
अच्छा जी, आपकी आवाज बहुत साफ तो नहीं आई, लेकिन जितना मैंने समझा है मैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ कि आपका सवाल इस तरह है शायद कि अगर किसी इंसान को पता चले, पहले ज़ाहिर है इतनी अवेयरनेस नहीं थी तो जैसे भी नमाज सिखा दी गई बचपन में वैसे ही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अब ज़रा अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ गई है तो अब पता चल रहा है कि वास बारीकी है कि जिसकी तरफ पहले हम मुतवज्जो नहीं थे। जैसे आपने मिसाल दी क़याम मुत्तसिल बा रुकू की, तो पहले ये लफ्ज़ ही नहीं सुना था हमने क़याम मुत्तसिल बा रुकू, तो अब हम शायद उसका ख्याल नहीं रखते थे इतना। अब क्या करें, इतनी नमाजें पढ़ चुके हैं, क्या उनको दोहराएं? तो मेरा ख्याल है दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा ब्लंडर हम कर रहे थे कि जिससे नमाज की जो शराइत हैं वही ख़त्म हो रही थी, यानी नमाज ही नहीं बन रही थी, वो नमाज के जो मिसाल के तौर पर जैसे नमाज के जो वाजिबात हैं उनकी भी दो किस्में हैं ना, रुकनी और गैर रुकनी, ठीक है। तो मसलन रुकनी है तो उस रुकनी के अंदर कोई ऐसा ब्लंडर कर रहे थे कि जिससे नमाज की शक्ल ही बाकी नहीं बचती थी, तो ऐसी सूरत में तो वो नमाज नहीं होगी, क्योंकि वाजिबात रुकनी वो हैं जो जानबूझ के अगर गलत हो जाए या भूले से छूट जाए, दोनों सूरतों में नमाज बातिल हो जाती है, तो ऐसी सूरत में तो नमाज नहीं होगी। वरना आम अगर खाव वाजिबात ही क्यों ना हो, अगर सही मालूमात ना होने की वजह से कोई गड़बड़ हो गई है तो उसमें भी नमाज मेरे ख्याल में ठीक है। बाकी जिस मुज्तहिद की तकरीर इस वक्त करनी चाहिए उनसे पूछना चाहिए, इस वक्त जिस मुज्तहिद की आपको तकरीर करनी चाहिए उनसे आप पूछ लें या उनके नुमाइंदे से पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर जवाब मिल जाएगा। दूसरा सवाल ये था कि फाइनेंशियल क्राइसिस का ज़माना है, जाहिर है कि महंगाई वगैरह ये वो, तो खुम्स का क्या करें? खुम्स के लिए तो शर्त ये है ना कि सेविंग हो, सेविंग के ऊपर खुम्स है। अगर सेविंग नहीं होती है तो कोई खुम्स नहीं है, सेविंग है तो खुम्स है। सेविंग कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि हर माल का आप ख्याल रखें कि इस पर साल गुजरा या नहीं गुजरा। दूसरा आसान तरीका जो जो सैलरीड पीपल वगैरह के लिए है वो ये है कि एक हम डेट फिक्स कर लें, उस डेट में हम चेक करें जाकर कि हमारे पास कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, ऐसी कैसी कैसी ऐसी कितनी चीज़ें रखी हुई हैं जो साल भर से इस्तेमाल नहीं हुई हैं, तो यानी नहीं लेकर आए और इस्तेमाल नहीं हुई, तो फिर उन चीज़ों को कैलकुलेट करके उसका 20% निकाल कर देना है, 80% फिर भी हमारे पास रहेगा। तो सेविंग से खुम्स निकालना है, अगर सेविंग नहीं होती है किसी की तो उसके ऊपर कोई खुम्स नहीं है।
अच्छा, अगर मैं तेजी से जो सवाल फ्लायर पे थे वो पढ़ देता हूँ, आप मुझे बताते रहेगा कि ये कवर होगा या नहीं हुआ। क्या तकलीद जरूरी है? तशय्यों में इश्तिहाद का आगाज कब हुआ? क्या मुश्तहिद नायब इमाम है? क्या तकलीद के बगैर अमल कबूल नहीं? क्या गैर मासूम की हुकूमत रहबरियत या फकीह की इताद वाजिब है? क्या विलायत फकीह आहदी से मासूमीन से साबित है? क्या वली फकीह का हुक्म पूरी दुनिया के लिए हुज्जत है? मुज्तहिदीन के दरमियान इख्तलाफ क्यों है?
अच्छा, बहरहाल देखिए ये सवालात तो कर दिए गए हैं लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने लेक्चर सुने ही नहीं है, तो ये लेक्चर तो मेरे ख्याल में आपके पढ़े हुए हैं अभी भी,
नहीं नहीं आगे मैं
तो
कह रहा
ये
हूँ
तो
कि
कितने सवाल
मैं
किए।
आपसे आपसे राय ले रहा था कि ये फ्लायर पे जो थे कवर होगा सारे कंप्लीट होगा
जी, ये इन्हीं
होगा
टॉपिक्स के ऊपर तो हमारी बात हुई है, इन्हीं
जी
टॉपिक्स के ऊपर
वैसे।
हमारी बात हुई है। एक 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 सवाल अगर आपके पास टाइम है तो मैं उसको एड्रेस कर दूं, और वो ये है कि ये सवाल किया भी जाता है, इस जो आपने लिस्ट पढ़ी इसके अंदर भी किसी हद तक ही आया है, और वो ये है कि जी इस्लामी रियासत अगर कायम है ईरान में और हम रहते हैं पाकिस्तान में तो या कहीं और, तो क्या हम पर भी वाजिब है? तो यहाँ पर देखें दो अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच ये है कि एक जगह इस्लामी रियासत कायम है और उसके बाहर कुछ लोग हैं जो उस रियासत के अंदर जाके बाद अगर कोई जुर्म कर देते हैं, जैसे अमीर मोमिनीन की हुकूमत कायम थी ना, तो अमीर मोमिनीन के कंट्रोल वाले इलाके में शाम से कुछ दहशतगर्द जाते हैं और जाने के बाद कार्रवाई करते हैं और वापस आ जाते हैं, और अली अलैहिस्सलाम सख्त उस पर नाराज़ होती हैं और वो सख्त खुतबा जो नजर बलागा का है खुतबा जिहाद वो अपने ही लोगों की मजम्मत में देते हैं, लेकिन खुद अली अलैहिस्सलाम भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, जो दहशतगर्द आए उन्होंने कार्रवाई की लूट मार की और चले गए, तो अली अलैहिस्सलाम भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो अब वो कहते हैं जी हम तो इस रियासत में रहते नहीं है तो हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो ये जो अप्रोच है ये है मुजरिमों वाले अप्रोच कि हम चूंकि उस रियासत में नहीं रहते लिहाजा हम जो चाहे कर लें। एक दूसरी अप्रोच है जो शियों वाली अप्रोच है और जिसको हम कहते हैं विलायत वाली अप्रोच। विलायत वाली अप्रोच ये है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में हैं, हम एक सिलसिला विलायत से मुतमस्सिक हैं। ठीक है, फर्ज करें कि हम हारून रशीद के जमाने में होते तो तख्त हुकूमत पे हारून रशीद बैठा हुआ था लेकिन जो साहिब विलायत था वो कैद खाने में था, तो हमारी वाबिस्तगी किसके साथ होती? हमारी वाबिस्तगी उस कैद खाने वाले के साथ ही होती, क्योंकि हम असल में एक सिलसिला विलायत से मुतमस्सिक हैं, तो उस सिलसिला विलायत में हुकूमतें हदूद नहीं बनती। इसलिए दुनिया के किसी भी कोने में हो अगर विलायत के सिलसिले से वाबस्ता हैं तो उसके लिए जो है वो साहिब विलायत का हुक्म जो है वो हुज्जत है और उसको उसी तरफ रुजू करना चाहिए और देखना चाहिए। वो वाली सोच नहीं होनी चाहिए सिर्फ कि हम चूंकि उस रियासत के हदूद में नहीं रहते उससे बाहर रहते हैं लिहाजा हम पर ये अप्लाई नहीं होता।
डॉक्टर साहब दुआ करवा दें, इख्तिताम करते हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने ये 5-6 लेक्चर जो भी हुए इनको बहुत संजीदगी के साथ और इस्तेकामत के साथ समाप्त फरमाया, तो इंशाल्लाह कभी किसी और मौजू के साथ हाजिर होंगे। इस दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि बारेला हमें दीन मुबीन इस्लाम की तालीमात को समझने और उन तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी इस्तवार करने की तौफीक।